وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله
اب آپ لوگ بتائیں سورۃ زمر کی آیتیں تھیں, بالکل ٹھیک کہا آپ نے, آخر کی آیتیں وسیق الذین, اس میں کیا بات ہو رہی تھی یا کس چیز کی طرف آپ کی توجہ جا رہی تھی؟ ایسی ایک ایک کر کے, کبھی ہوتا ہے نا کوئی ایک لفظ اردو سے مل جاتا ہے کوئی لفظ, کبھی کچھ ایسا ہوتا ہے نا. جی آپ شاباش, یعنی آپ کی توجہ گئی کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی کی بات تھی, بالکل ٹھیک ہے. اس میں قرآن پاک کی وہ معروف آیتیں ہیں جس کو وسیق الذین اتقوا کہتے ہیں, اور اسی طرح لا تقنطوا من رحمت اللہ, اور کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اور کیا کیا تھا اس میں؟ جنت اور دوزخ کا بیان تھا, بالکل ٹھیک ہے کہ جن وما قدر اللہ حق قدری, ٹھیک ہے شاباش. اور ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب قرآن پاک سنے تو اس کی سمجھ آئے تو کیسے لگتا ہے, ایسے لگتا ہے نا کہ جیسے کسی اپنے پیارے کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. تو میں آپ کو بھی یہی دعا دوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کا قرآن کے ساتھ ایسا خوبصورت تعلق جوڑ دے کہ جب آپ اس کو پڑھیں یا سنیں تو آپ کو بالکل ایسی سمجھ آئے جیسے اس وقت آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے. آپ میں سے جس کی زبان اردو ہے, میرا خیال ہے کہ میری بات ان کو سمجھ آ رہی ہے نا. تو قرآن جو ہے کتاب ہدایت ہے, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو سنیں تمہیں سمجھ آ جائے. سیدھی سی بات ہے, کسی بھی بات پہ عمل کرنا ہو تو لکھ لکھ کے پڑھ پڑھ کے ترجمہ کھول کے تو نہیں دیکھتے نا. آپ کا بچہ آپ کو کہے, آپ اپنے بچے کو کچھ کہیں تو وہ کہ اچھا ڈکشنری سے کھول کے دیکھتا ہوں کہ امی نے کیا کہا ہے, اس کا کیا مطلب ہے, تو پھر وہ آپ کی بات مانے گا؟ نہیں مانے گا نا. تو قرآن بھی اصل میں ایک کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک مینول آف گائیڈ رکھا ہے. تو انشاءاللہ آج اسی کی روشنی میں ہم کچھ باتیں کریں گے. آئیے شروع کرتے ہیں. آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جزاک اللہ خیر. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے لوگو, کھاؤ اس میں سے جو ہم نے تم کو اس میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دیا زمین میں سے. دو شرائط ہیں, حلالاً طیبہ, حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو, پاک بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو. اور کیا نہ کرو, ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے قدموں پہ نہ چلو. یہ شیطان کے قدم کیا ہوتے ہیں؟ ہر وہ راستہ جو جہنم کی طرف لے جائے. بس کہہ لیجئے کہ وہ شیطان کا ایک قدم ہے, اس کے بہت سارے راستے ہیں. کیوں نہ چلو؟ اس لیے کہ انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. سورۃ بقرہ کی آیت 168 ہے یہ, اور اگر تھوڑا سا اس سے ہی آگے جائیں تو 172 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, کلو من طیباتی, پاکیزہ میں سے کھاؤ. کون سا؟ ما رزقناکم, جو ہم نے تم کو دیا, یعنی اپنی حق حلال کی کمائی کا کھاؤ, دوسرے کا نہ کھاؤ, چھین کے نہ کھاؤ, چوری چکاری سے نہ کھاؤ, اپنے حصے کا کھاؤ. اور کھا کر کرو کیا؟ وشکرو للہ, اور اللہ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو. ان دونوں آیتوں کو چوز کرنے کی وجہ لفظ طیب ہے, اور ہمارا آج کا لیکچر بھی حیاتن طیبن سیریز کا ایک لیکچر ہے جس میں ہم مختلف طریقوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکیزہ زندگی کیسے گزرتی ہے. لیکن آپ یہ چیز مانتے ہیں کہ جب تک انسان فطرت پہ رہتا ہے, جب تک انسان اس اس فارم میں ہوتا ہے جس پہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, تو وہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. पाक जिस्म, पाक घर, सफाई पसंदी। आप देखिए, कहते हैं कि जानवर भी अपनी जगह पे बैठता है तो पहले नीचे से मट्टी झाड़ लेता है। कभी आपने कुत्तों बिल्लियों को बैठते देखा होगा तो दुम से जगह साफ करके बैठते हैं, और वो भी जब गंदगी से अपने आप को बचाते हैं, यानी गंदगी करते हैं तो इर्द गिर्द से मट्टी लेकर ऊपर डाल देते हैं। तो एक इंसान जिसको अल्लाह ताला ने अहसन व तकवीम में पैदा किया, जिसको अल्लाह ताला ने इज्जत दी, जिसके लिए फरिश्तों को अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया कि इसके आगे झुक जाओ, आदम को बहुत सारी इज्जत तकरीम मिली थी ना, तो वो इंसान कैसे अपनी तबीयत के एतबार से पाकिजगी को पसंद ना करे। तो इस्लाम का हमसे द लीस्ट छोटा सा मुतालबा क्या है कि तुम लेवा प्योर लाइफ, ऐसी ज़िंदगी जियो कि जो पाकिजगियों से भरी हो। पाकिजगी के साथ जीना क्या होता है कि एक इंसान की सोचें पाकिज़ा हों, इंसान की आंखें पाकिज़ा हों, दिमाग में जो सोच आए वो साफ़ सुथरी हो, गंदी सोचें नहीं आनी चाहिए। बीइंग अ ह्यूमन, इंसान को इन ह्यूमन थॉट्स नहीं रखनी चाहिए। और इन ह्यूमन थॉट्स क्या होती हैं? दूसरों के बारे में नफ़रत, बुग़्ज़, हसद, रकाबत, किसी के माल को चोरी करना, यानी हर नेगेटिव सोच जो दिमाग से उठती है ना, इस्लाम कहते हैं इसको निकाल कर फेंक दो। तुम्हारी सोचें बिल्कुल पाक होनी चाहिए, गंदी चीज़ें ना आए। फिर तुम्हारी आंखें पाक हों, प्योर साइट, क्लीन आइज। अब साइट प्योर कब होती है? जब हमारी आंखें गलत चीज़ों को देखने से पहले ही झुक जाएं। जब आंखों के रास्ते गलत चीज़ें अंदर जाती हैं ना, तो सोचें ख़राब होती हैं। ये जहन में रखिएगा। बहुत सारे लोग जिनको आप नेगेटिविटी का शिकार देखेंगे, जिनके दिमाग में गंदी सोचें हैं, पैसे वाइज पैसे मिस्ड होते हैं, या गंदी बातें सोचते हैं, या वल्गर टॉक करते हैं, कुछ भी, यानी दिमाग में गंदगी भरती तीन रास्तों से है, याद रखिए, नज़र, ज़ुबान और कान। ये अल्लाह ताला ने तीन रिसेप्टर्स रखे हैं, अगर आप इंग्लिश में कहें ना, रिसीव करते हैं ये। हमारी आंखें देखती हैं अच्छी चीज़ें, प्योर चीज़ें, साफ़ चीज़ें देखेंगी, प्योर और साफ़ चीज़ें देखेंगी तो हमारी सोचें साफ़ रहेंगी। इसीलिए आप देखिए कि जो लोग गंदी चीज़ें नहीं देखते, गंदी फिल्में, ड्रामे और इस तरह की चीज़ें उनकी ज़िंदगी में नहीं आती, तो उनकी सोचें बहुत क्लीन रहती हैं। इसी तरह आप 5 से 20-25 साल पीछे चले जाइए तो जवान होने तक भी बच्चों को ऐसे सेक्सुअल मैटर्स का पता ही नहीं होता था, क्योंकि ना देखा, ना सुना, ना बोला, राइट? तो वक्त के साथ साथ जूं जूं ज़रूरियात पैदा होती थी जिसम में, वो सोचें आती थी और उसके साथ फुलफ़िल होती थी। इसके बरक्स अगर इसको आप आज के हालात के तनाजुर में समझिएगा, तो आप देखिए कि चारों तरफ गंदगी देखने को मिलती है, गंदी चीज़ें सुनने को मिलती हैं, और इसी तरह से इधर उधर की गंदगी दिमाग में चली जाती है। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी सोच साफ सुथरी रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच साफ सुथरी रहे, तो फिर आपको अपनी आंखों को गंदी चीज़ों के देखने से बचाना होगा। ये ऐसे कि जैसे ये आपका घर है ना, तो आपने इसको साफ सुथरा कर दिया, खूब अच्छी डीप क्लीनिंग करवाई, मेट को बुलाया, आप $400 दे दिए, वट एवर, क्लीन हो गया। अब आप चाहती हैं कि ये घर साफ रहे, आप क्या करेंगी? सब डोर्स बंद कर देंगी, विंडोज़ बंद कर देंगी, अगर ऊपर कोई रोशनदान है तो वो बंद कर देंगी, ऐसे ही है ना? आप पूरी कोशिश करेंगी कि बाहर से हर वो रास्ता जिधर से मट्टी, डस्ट, गंदगी, कोई और चीज़ आनी हो उसको बंद कर दें। दूसरी मिसाल है, आप इस घर को ठंडा रखना चाहती हैं, एसी लगाते हैं, तो क्या आप एसी लगाकर सब विंडोज़ खोल देते हैं? नहीं, आप जितना मर्ज़ी पावरफुल एसी भी लगा लेंगे, लेकिन बाहर के दरवाजे खुले रहेंगे तो बाहर से गर्मी, धूप सब अंदर आएगा। यही मामला हीट के साथ है। बस इसी मिसाल को आप अपने दिल और दिमाग में रख लें। आज हम परेशान हैं, सच्ची बात है, हम परेशान हैं। यह अलग बात है कि हम परेशान दिखें ना दिखें, हम दूसरों को बताएं ना बताएं, क्या परेशानी है? साहिबे दिल है ना, अगर आप, यानी साहिबे दर्द हैं, अगर आपको वाकई इंसानियत से प्यार है, और ख़ास तौर पे बीइंग अ नेशन, उम्मत मुस्लिमा से प्यार है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार है, तो आप तो बहुत परेशान हैं। यदि मैं अपने ऊपर लेके कह सकती हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। किस बात पे? आज उम्मत की हालत को देखकर, आज उम्मत के मुस्तकबिल का सोचकर मेरा दिल बंद हो जाता है। वल्लाह इसमें कोई मुबालगा नहीं है, ये कोई मैं लफाजी नहीं करती, मुझे तो सीधी सी बातें करनी आती है, मुझे कोई लंबे लंबे कलाबे मिलाने कोई नहीं आते, लेकिन ये मैं आपको अपने दिल की हर धड़कन के साथ, वो जो एक खून रिश्ता हुआ महसूस होता है ना, जो मेरे अंदर हर वक्त एक तलब तड़प और एक दुख का एहसास होता है, वो मुझे लोगों को, उनके हालात, उनके बच्चे, उनके घर, उनकी जिंदगियों के अंदर झांक कर जो दर्द महसूस होता है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। लोग परेशान हैं बच्चों की वजह से। क्या परेशानी है? बच्चे हमारे जो हैं वो हमारे साथ नहीं चलते, हमारी सोच उनकी और है। हर वक्त कानों में आई उनके अगर हेडफोन्स है तो आंखें कहीं और है, तो हाथों पे चिटचैट है, और दिस एंड दैट। यानी एक जनरेशन गैप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आप इसको इमेजिन करते हैं? यानी जो मोहब्बत आज से 25-30 साल पहले आपको अपनी माँ से महसूस होती थी, आज आप चाहती हैं कि आपकी बच्ची भी वही मोहब्बत का इजहार करे। करती भी होंगी। देखिए, फितरत के खून के रिश्ते हैं। इसमें मैं ये नहीं कहती कि आज के बच्चों को माँ बाप से प्यार नहीं है, लेकिन अपेरेंटली वो इजहार नहीं है, दूरी है। और यही हालात हर रिश्ते में दिखते हैं। इसको तो अभी छोड़ दीजिए, ये तो हम फिर किसी और नशिस्त में करेंगे बात, जहाँ अल्लाह ने मौका दिया। लेकिन इस वक्त जो मैं बात करना चाहती हूँ वो ये है कि वजह क्या है। आज उम्मत मुस्लिमा की तरजीहात, उसकी इकदार, उसकी वो जो नॉर्म्स थे ना, वो क्यों बदल गए? कल बाप और बेटी के रिश्ते का जो तकद्दस था, आप अपने बाप के साथ अपना याद कर लीजिए। अब्बा से मोहब्बत भी होगी, लेकिन अब्बा का रोब कितना था? अब्बा को देखते ही घर में इधर उधर पड़े दुपट्टे सर पे लेने का ख्याल क्यों आ जाता था? ऐसा होता था कि नहीं? सच बताएं, ससुर के साथ एक लिहाज था कि नहीं? दादा, नाना, बाप, भाई, यानी हर बड़ा जो होता था ना, वो बुजुर्ग होता था। माजरत के साथ, दुख के साथ कहूंगी, आज के बड़े तो हैं वो बुजुर्ग नहीं रहे। आज दादा है वो बुजुर्ग नहीं लगता, बाप है वो बुजुर्ग नहीं लगता। जिस रंग रूप हाल हुलिये में आज बच्चियां अपने बाप, दादा, नाना, मामू, चचा, बाप, भाई के सामने होती हैं, सच बताइए, आप इसका तसव्वुर भी कर सकते थे? कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं है, कोई 20-25-30 साल पीछे चले जाइए, बहुत लंबी तो कहानी नहीं है। हम नहीं कहते कि घर में भी आप बुरके पहन के फिरें, लेकिन एक लिहाज, एक शर्म, एक हया होती थी। आज हमें एक गम लगा हुआ है कि ऐसा नहीं दिखता। जिस रंग रूप में आज की बच्ची बाप के सामने आती है, और बाप के माथे पे बल भी नहीं पड़ता। क्या आपके बाप ऐसे थे? और अगर आज फातिमा का बाप इस माशरे में आ जाए, तो क्या वो फातिमा को इस रंग रूप में देखना पसंद करेगा? कि जिस्म का एक एक जोड़ हिलता गिन लो, उसका नाप कर लो, उसका मोटापा देख लो, उसका जिस्म का एक एक फिगर देखो। और पहले तो किसी घर के अंदर झांक के किसी को देखना पड़ता था, आज तो ये कंप्यूटर की खिड़की बहुत है। आज तो व्हाट्सएप, वाइबर के प्रोफाइल पे पिक्चर्स देख लीजिए, और फेसबुक को तो जो हमने कम्युनिकेटर बना लिया वही देख लीजिए। पहले लोग छुपाते थे, अब लोग दिखाते हैं। पहले कोई किसी पे कमेंट करता था तो माइंड करते थे, शर्माते थे, नहीं अब ऐसे तो ना कहे ना। और अब लोग माइंड करते हैं कि आपने हमें लाइक ही नहीं किया, आपने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। भला ही, ये मैं सिर्फ आपको एक सोच की तरफ लेके जाना चाहती हूँ कि हम सब का इरादा तो है कि हम पाक जिंदगियाँ बसर करें, लेकिन आज हमें पाकी नज़र आती क्यों नहीं दिखती? आज रिश्तों में वो पाकीज़गी नहीं, नज़रों में वो पाकीज़गी नहीं। और फिर दूसरी चीज़ ले लीजिए कि जो आज मनाजिर स्क्रीनें हमें दिखाती हैं, जिन घरों में टीवी है, मैं टीवी को हिट नहीं करती, टीवी हो, कंप्यूटर हो, रेडियो हो, ये आपके अपने इस्तेमाल पे है, ना मैं उसके खिलाफ़ हूँ ना मैं हक में हूँ। मैं आपको सिर्फ एक थॉट देना चाहती हूँ, आज से 20 साल पहले वो मंज़र, वो सीन, जो शायद शौहर बीवी बच्चों को सुला के आधी रात को उठ के देख लें तो देख लें, और ये कह दें कि ये बच्चों के देखने वाला मंज़र नहीं, या ये फिल्म बड़ों के देखने वाली है, आज क्या वो हमारे चलते फिरते नज़रों से नहीं गुजरते? आज जिन घरों ने टीवी के नाम पर या खबरों के नाम पर टीवी को रखा और घर का फर्द बनाकर सारा दिन आवाज़ बंद कर देते हैं, तस्वीर चलती रहती है, कहते हैं घर का फर्द है। जो मंज़र वहाँ आप देखते हैं, कभी आपने आज से 10-15 साल पहले देखे थे? और जिस तेज़ी से मीडिया असरअंदाज हुआ है हमारे मुल्कों का, मुझे तो सिर्फ चंद क्लिप्स ही लोगों से जो मिल जाते हैं उसी को मैं देखती हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी तो दसरा से ये चीज़ें अब ऊपर हैं। लेकिन आप देखिए, एडवर्टाइजमेंट्स देख लीजिए आज के दौर के, आज के दौर की, या आप कोई खबरें देख लीजिए, आप तो पढ़ने सुनने से ज़्यादा देखने को दिल करता है। टॉक शोज देख लीजिए, जो मेज़बान बैठे होते हैं उनका लिबास देखिए, उनका जो बेदिल फेंकने वाला अंदाज है अपने मेहमानों से बात करने का, क्या आपको ये एक प्योर मुआशरा लगता है? क्या ये एक पाकीज़ा मुआशरा है? क्या ये एक हयात तैयब है? अब आप कहेंगे कि हम तो वेस्ट में बैठे हैं, हमें क्या पता हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। नहीं, ये इस काली स्क्रीन ने हर जगह हर चीज़ को आम कर दिया, और आप ये भी मत सोचिए कि आप वेस्ट में रहते हैं तो आपको बाहर गंदे सीन देखने पड़ते हैं। बाहर तो मुझे अल्लाह के हुक्म से कोई कभी कभी इक्का दुक्का ही कभी नज़र पड़े, और वो भी एयरपोर्ट्स पे और ऐसी जगहों पे जहाँ लोग अपने जज्बात का पे काबू ही ना पा सकें। अदरवाइज़ मैंने पिछले 15 साल 16 साल हो गए मुझे यूएसए में इधर उधर होते हुए, लेकिन इस सरजमीन पर कदम रखे अल्हम्दुलिल्लाह 15-16 साल हो गए। मैंने बाहर उतनी गंदगी नहीं देखी जो बाहर हमारे मुल्कों में दिख के सोचते हैं ना कि वहाँ तो पता नहीं क्या होगा। ठीक है कोई गंदे कपड़े पहने, लेकिन मैंने आम लोगों को मुहज़ब ही देखा है। इल्ला शिल्ला कभी किसी का कोई दिमाग ख़राब हो तो वो रोड पे भी उन्हीं कपड़ों में आ जाए जिसमें घर में भी नहीं बंदा रह सकता, और उसको बाहर आते हुए कपड़े भूल जाए पहनने, वो कोई एक होगा कोई साल 6 माह में। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे ही नज़रें कब नापाक होती हैं, जब हम अपने घरों में एंटरटेनमेंट के नाम पे, मीडिया के नाम पे, किसी भी अच्छे मकसद के नाम पे, हम अपडेट रहना चाहते हैं हमारे मुल्कों में क्या हो रहा है, हम हालात हाजरा की खबरें रखते हैं, जितना कुछ हमें अपने घरों में गंदगी देखने को मिल सकती है उतनी तो बाहर भी नहीं मिल सकती। एक लफ्ज़ लिखें आप अपने टेलीफोन कीबोर्ड के साथ तो आपको वो कुछ दिखा देगा वो कि जिसके लिए पहले शायद कितने लाइसेंस लेने पड़ते होंगे। बच्चे बच्चे के हाथ में आज फ़ोन है, अगर आपने अपने बच्चों की सोचों का तज़किया ना किया आपको क्या पता वो किस आग में जल के सोते हैं। हम कहते हैं ना ये चिड़े चिड़े रहते हैं, हम कहते हैं ये इरीटेटेड रहते हैं, आपको क्या पता कि आप उनको दो कश्तियों का शिकार करते हैं, एक तरफ उनको आग दिखाते हैं दूसरी तरफ ये है कि इससे फ़ायदा भी नहीं उठाना। देखिए वो सोसाइटीज़ के जहाँ निकाह के लिए तो 18 साल की कैद है, 18 ईयर्स के होंगे तो निकाह होगा, और जिना के लिए कोई कैद नहीं। सोचिए तो मेरे ख्याल ये थोड़ा सा गैप हमें सोचने के लिए मिला था। मैं कोई भी बात गलत कहूँ ना जिससे आपको इत्तेफाक ना हो, आपको पूरा हक है बाद में मुझसे बात करने का कि आपने कुछ ज़्यादा ही कह दिया या आपने कोई गलत फहमी की बात की, ऐसा नहीं है। हम तो बड़े पाक माशरों में रहते हैं और माशरे से मुराद वेस्टर्न या ईस्टर्न माशरा नहीं है। यदि आप मेरी इस बात से ये ना सोचें कि हम वेस्ट में रह रहे हैं तो हम गंदे हालात देखते हैं और ईस्ट में रहते हैं, मेरी बात हर एक से इस वक्त भी हो सकता है कोई पाकिस्तान या इंडिया या दुनिया के किसी हिस्से से भी सुन रहा हो और बात में जाने कहाँ तक बात जाएगी। ओवरऑल मैंने ये देखा है कि आज हमारे इर्द गिर्द हर वो चीज़ जो हमारी सोचों को डिस्टर्ब कर दे वो हमारी रीच में। आप 18 साल से पहले शादी नहीं करने देते किसी को, आपका कानून ये कहता है, लेकिन जिना के लिए 10 साल से ऊपर की भी कोई पाबंदी नहीं है। चारों तरफ आग भड़काने वाले मनाजिर हैं और आप कहते हैं कि अब खबरदार आग बुझाई। तो जब आप देखिए एक फितरत का असूल है, बच्चा पैदा होता है ना तो उसके मुंह में दांत नहीं होते। जो माएँ हैं ना नर्सिंग करती हैं, कभी वो एक लम्हे के लिए सोचें पैदा होते बच्चे के मुंह में अगर दांत होते तो माँ का क्या हाल होता। अल्लाह सुबहाना ताला को पता था कि अभी इसको कुछ महीने सिर्फ दूध चाहिए और दूध निकलने के लिए दांतों की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने दांत नहीं दिए। थोड़ा सा बच्चा बड़ा हुआ 4-6 महीने का हुआ तो अब अल्लाह को पता है कि अब इसको कुछ देना है, तो हल्का सा एक दांत निकला दूसरा निकला, जूँ ही खाने की हाजत बढ़ी दांत पूरे हो गए मुँह में खाने लग गए। फितरत का असूल है, बच्चा पैदा होता है आप देखिए लेटा रहता है ना, बैठता नहीं है, खड़ा नहीं हो सकता, क्यों? अल्लाह को पता है अभी 4-6 महीने इसने लेटना ही लेटना है। आप सोचिए ना ज़रा पैदा होता बच्चा बैठने लग जाए और उठ के खड़ा हो जाए, माँ जो अभी बिस्तर से नहीं उठ पा रही उसका हाल क्या होगा। आप ये फील कीजिए, ये अल्लाह ताला के खामोश इशारे हैं, वो इंसान की ज़रूरतों को पूरा करने वाला है, उसने हर ज़रूरत पूरी करना अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लिया। अलहादी भी है तो अलखालिक भी है तो अलवहाब भी है। जूँ जूँ बच्चे की ज़रूरियात बढ़ती हैं आप देखते हैं कि उसकी जिस्म के अंदर वैसी चेंजेस आनी शुरू होती हैं। सबसे ज़्यादा हैरत तो मुझे होती है इस असूल को देखकर कि 7-8 साल की उम्र में माँ के पेट से जो पैदा होने के बाद दांत मिले थे जिसको आप दूध के दांत कहते हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं। क्यों? कि अल्लाह को पता है कि बच्चे कैंडीज़ खाते हैं, अब कैंडीज़ तो हम खिलाते हैं ना, मीठा तो खाते हैं ना, अगर दूध के दांत ही रहते साथ तो यकीन करें 20-22 साल की उम्र में सारों के दांत उतरे होते हैं। ये किसका फैसला था? آپ ذرا اپنے اللہ کی قربت محسوس کریں صرف اس ایک چیز سے. جو مالک ان ضروریات کو اتنے اچھے طریقے سے پورا کر رہا ہے، کیا وہ مالک میری باقی ضروریات کو پوری نہیں کرے گا؟ وہ تو خود کہتا ہے سورت ملک میں، الا یعلم من خلق، لوگوں کیا میں نہیں جانتا جس نے پیدا کیا. تم کیوں روتے ہو؟ تم کیوں دکھی ہو؟ تم کیوں پریشان ہو؟ تم کسی کو کیوں سناتے ہو؟ اس رب کو سناؤ، اس سے مانگو، اس کو تمہاری ہر ضرورت کا پتہ ہے. اور صرف ضرورت ہی نہیں، ہماری خواہشات بھی پوری کرتا ہے. پہلے انسان کی نیڈس پوری کرتا ہے، پھر نیڈس پوری ہو جاتی ہیں تو اس کی وانٹس بھی پوری کرنے لگتا ہے. پہلے صرف ہمیں ضروریات زندگی میسر کرتا ہے، پھر اس کے بعد تعیشات بھی دے دیتا ہے. آپ اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنی زندگی کو دیکھیے، کیا صرف ضرورت کی حد تک جی رہے ہیں؟ نہیں، اللہ ہماری خواہشیں بھی پوری کرتا ہے، ہمارے شوق بھی پورے کرتا ہے. تو کیا وہ ذات نہیں جانتی کہ بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو بچے کے ساتھ ساتھ اس کی نعمتیں بھی بڑھتی ہیں. اب آگے کیا ہوتا ہے؟ خیر، بچہ چلنے لگا، پھرنے لگا، پہلے بیٹھتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، کرال کرتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر بھاگتا ہے، تو بھاگ ہی جاتا ہے، پھر گھر سے ہی بھاگ جاتا ہے نا. خیر، بچہ چلا 10-11 سال کی عمر. آپ اپنے بچے میں ایک چینج دیکھتے ہیں، اور تو لڑکیوں کی چینج بھی بڑی واضح ہے، لڑکوں کی بھی چینج نظر آنے لگتی ہے. آواز بدل گئی، جسم پہ بال آنے شروع ہو گئے، جو بھی آپ پی بی ٹی کے سائنس دیکھتے ہیں. اب یہ ہے وہ وقت جس وقت جذبات کو اظہار چاہیے. اگر ہم انٹرپشن نہ کریں، انٹرپٹ نہ کریں کائنات کے اور فطرت کے نظام کو، تو لڑکیاں 12-13 سال کی عمر میں پی بی ٹی کی ایج میں آ جاتی ہیں، اور لڑکے عموماً 15-16 سال کی عمر میں ہوتے ہیں. یہ ایک نیچرل فینومینن ہے جو شروع سے دیکھتے ہیں. اب میں نے یہ جو لفظ انٹرپشن بولا، اس کو بھی سمجھا دیتی ہوں. انٹرپشن کیسے ہم کرتے ہیں، بچہ انٹرپٹ کیسے ہوتا ہے، اب اس کو سمجھیے گا، کیونکہ یہ آج گھر گھر کا مسئلہ ہے. انٹرپشن کیا ہوتی ہے؟ کہ جو پروسیس سلولی سلولی 12-13 سال میں، اور لڑکوں میں 15-16 سال میں چلنا تھا، کب؟ جب اس کے ارد گرد اس کے معاشرہ، اس کا ماحول پاکیزہ ہو، گھر کا ماحول بہت صاف ستھرا ہو، ماں باپ ہیں گھر میں، وہ اس ایج سے اوپر ہیں جس میں بھی بچے نہیں ہیں، لیکن ماں باپ کا گھر میں اٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا بچوں کو بالکل وقت سے پہلے بڑا نہ کرتے ہیں. پھر گھر کا ماحول، ڈریس اپ، ہر چیز جو فطرت پہ رہتی ہے، بچے 15-16 سال کی عمر تک بھولے رہتے ہیں، ان کو ان چیزوں کی کوئی سمجھ نہیں آتی. لیکن جب باتیں اس سے اپوزٹ ہونے لگیں، انٹرپشن کب ہوتی ہے؟ جب ایک ینگ بچہ اپنے برابر کی لڑکی کو بالکل مختصر سے کپڑوں میں اپنے ساتھ بیٹھے دیکھتا ہے، اسکول میں، کالجز میں. اور اس وقت آج، بلکہ اس ٹرپ میں مجھے بہت سی سسٹرز مل رہی ہیں جو ڈے کیئرس میں کیسا انوالو ہیں، کسی طرح 2-3 دنوں میں نے جو دیکھا ہے، آپ ان سے جا کے بیٹھ کے دیکھ لیں. آج ڈے کیئرس کے بچے، یعنی بہت چھوٹی سوچ، چھوٹی عمر کے بچوں میں سیکشولی کئی چیزیں نظر آتی ہیں ٹیچرس کو، میرے سے شیئر کرتی ہیں آ کے میری اسٹوڈنٹس. کیا آپ کو ہوتا ہے کہ بچے یہ کہتے، یہ کیا کہتے، ہم نے یہ دیکھا تھا تو پھر ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کھیل، ماما پاپا کھیل رہے تھے، ہاں ہم نے یہ دیکھا تھا. واللہ ہی یہ باتیں کہنے کی نہیں ہیں، لیکن اس کو سمجھیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو وقت سے پہلے بڑا کر دیا. اب ہوتا کیا کہ ایک بچہ پڑھنے کے لیے الحمدللہ گھر سے نکلتا، اور میں سوچتی ہوں ایک ماں اور ایک باپ کتنی محنت کرتے ہیں ایک بچے کو اسکول بھیجنے کے لیے، مالی طور پہ تو جو ہے ہی سو ہے، ایفرٹ کتنی ہے. صبح اٹھتے ہی گھر کا ماحول کیا بنا ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ کوئی میدان جنگ میں جانے کی تیاری ہے، پورا گھر ایک دم ایکشن میں آیا ہوتا ہے. کب؟ جس دن بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے. یہ ویکینڈ اور ویک ڈیز کا فرق کیا ہے ہمارے ہاں، ہولی ڈے اور بغیر ہولی ڈے کا فرق کیا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. کیسے جانتے ہیں ہم لوگ؟ کہ ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں پہلے سے کہ یہ سب کچھ ارد گرد ہمارے ماحول میں ہو رہا ہے. کیوں؟ کہ ہم اپنے ارد گرد بچوں کو جس جگہوں پہ بھیجتے ہیں، اب آپ تو علم کے لیے بھیجتے ہیں نا، کوئی ماں اپنے بچے کو اس لیے تو نہیں بھیجتی کہ یہ بچہ جا کے اپنے دوست سے غلط چیزیں سنے، سیکھے اور گھر آ کے پھر اس کا اثر آئے. دوستوں میں، ساتھیوں میں کچھ ایسی چیزیں بچے سیکھ آتے ہیں کہ جس کو دیکھنے کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اس میں کوئی نگیٹیوٹی آ رہی ہے. اور یاد رکھیے، چھوٹی عمر میں ان چیزوں کا سسپینس بھی بہت ہوتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آنکھیں، نظر، کان، پیٹ، دل پاک رہے، تو آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. اب آپ بچے کے ہاتھ میں سیل فون دیتے ہیں، آپ کو تو اتنا چلانا نہیں آتا جتنا اس کو آتا، پاس ورڈ بھی کوئی لگائیں گے تو اس کو ہی پتا ہوگا، ہے نا ایسی چیز. अब मुझे बताइए कि अगर आपने अपने बच्चों का, अपने छोटी उम्र से लेके, चले हम यंग बच्चों की बात करते हैं, 10-12 साल ऊपर, 15 साल की उम्र के बच्चे बच्चियाँ, अब आपने उनका तज़किया तो नहीं किया, आपने उनको ये नहीं बताया अभी कि कुरान क्या कहता है, यग़ुद्दु मिन अबसारी है, अपनी नज़रों को झुका के रखो, औरत को भी कहा यग़ुद्दु न मिन अबसारी है ना, सूरत नूर में दोनों हुक्म मौजूद हैं, ओ मुसलमान ईमान वाले मर्दों अपनी नज़रों को झुका के रखो, और ईमान वालियों अपनी नज़रों को भी झुकाओ, और वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, और अपनी जीनत का इजहार ना करना, और वलयदरिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, ये तीन मैंने चीता चीता हुक्म दिए, मेरा मौजू पर्दा नहीं है, वरना मैं आपको पूरा सिखाती, आप सुनना चाहें इस आयत की तफसीर में लिबास हिजाब की जो पाबंदियाँ उसको सीख लें, लेकिन इस्लाम के तकाजे मर्दों से क्या हैं, एक तकाजा ये कि अपनी नज़रों को झुका के रखो, किसी गैर की तरफ नज़र उठती है फौरन नज़र नीचे, अब पूरी आंखें तो बंद नहीं कर सकते ना, इट्स नॉट पॉसिबल, और ये एक बिल्कुल बेकार बात होगी अगर कोई कहते कि लिटरली कोई मर्द किसी नज़र को उठा के ना देखे, ज़िंदगी का काम ही नहीं चल सकता, गाड़ी नहीं चल सकती, कुछ नहीं करते, क्या करो, नज़र को झुका लो। फरमाया कि निगाह शैतान के तीरों में से एक तीर है, जब कोई अल्लाह के खौफ से किसी खूबसूरत औरत को देखकर नज़र को झुका लेता है तो अल्लाह ताला उसके दिल को ईमान से भर देता है। अब ये छोटे छोटे हुक्म है ना, और शैतान का वार बंदे पे कब होता है, बुरी निगाह से, पहले बद निगाही होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी मरहले तय होते हैं, और बुखारी की बड़ी मारूफ रिवायत है जो सिर्फ यहाँ हवाला ही दे सकती हूँ, आगे आप चाहें तो बाद में सुन लीजिए, कि आंखें भी जिना करती हैं, कान भी जिना करते हैं, ज़ुबान भी जिना करती है, आंखों का जिना के शहवत भरी नज़रों से गैर को देखना, अब औरत मर्द को देखे या मर्द औरत को देखे, लड़का लड़की को या लड़की लड़के को, ऑल आर सेम, शहवत से आम तौर पे नहीं, आपने देखा बस नज़र झुका लीजिए, दिल में कोई बुरा ख्याल आएगा ही नहीं, आया भी तो चला जाएगा, अल्लाह ताला ईमान दे देगा आपको। अब जिसने ऐसी नज़र से एक लड़के को देखा कि क्या हाउ डैशिंग हिज, अब मुझे बताइए कि राह चलते वो किसी देखा देखा, स्कूल में देखा, कॉलेज में देखा देखा, या स्क्रीन पे बैठे किसी हीरो को देखे, क्या वाह हेलो हाय क्या है, और उसको कहा कि हम तो इसके फैन हैं, और हम तो इनके, ये हमारे आइडियल नहीं बल्कि आइडल है। अब मुझे बताइए कि छोटी उम्र से अगर इस चीज़ को हमने टेम किया होता बच्चों को कि किसी के ऊपर निगाह पड़े तो नज़र को झुका लो, तो ये बड़े होकर सोच के और नज़र के और दिल दिमाग के फितने आते। कुरान पाक में इसकी मिसाल मौजूद है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत बचपन में, कह लीजिए अपनी समझ के लिए हम समझ लेते हैं, 7-8 साल की उम्र में बाप से जुदा हो गए, माँ का तो इंतकाल पहले ही हो चुका था, और एक ऐसे माशरे में चले गए जिसको आज की ज़ुबान में कह लें कि ईस्टर्न कंट्री से निकल कर वेस्टर्न कंट्री में भेज दिए गए, मिस्र में, जो उस दौर की बहुत पॉपुलेटेड, बहुत पॉपुलर स्टेट थी। वहाँ हालात क्या थे कि किसी भी सोसाइटी के अगर डिक्लाइन को देखना हो ना, अपने डिक्लाइन समझते हैं उसके जवाल को, या किसी सोसाइटी का क्या मोरल है इस वक्त, तो याद रखिए आम हालात में फितरत क्या, फितरतन एक जो शैतान ने दिल में डाला ना कि मर्द दावत गुनाह देता है, एक फितरी बात है, पहल मर्द की तरफ से होती है जिना की, बेहयाई की, बदकारी की, लेकिन जब कोई सोसाइटी ख़राब होती है, पवर्टेड सोसाइटीज़ में गुनाह की दावत औरत देती है, सीधे साधे लड़के कहते हैं हम क्या करें, वो खुद आके हमारे सामने बैठती हैं। ये एक बच्चे की कहानी कि जिसे अपनी माँ से या जिससे भी शेयर की कि मैं क्या करूँ कि स्कूल की लड़कियाँ, बस नहीं उनका चलता कि आके मेरी गोद में बैठे, और मुझे मजाक करते हैं लोग कि तुम हमें देखते हैं, और जो लड़का ज़रा सा शराफत से नज़र इधर उधर करे वो उसका फिर मजाक उड़ाते हैं कि ये लड़का ही नहीं है, ये पता नहीं क्या कुछ नाम लेते हैं। यदि मैं यहाँ बैठ के अगर आपको सिर्फ वो चंद बातें जो मैंने डायरेक्ट लोगों से सुनी होती है ना, अगर शेयर कर दूँ तो आपके कानों में से धुआं निकलने लगे कि जिस माशरे में आज मेरे और आपके हमारे बच्चे पल रहे हैं, कितना अग्रेसिव माशरा, एड़ी चोटी का जोर इस वक्त लगाया जा रहा है लोगों को गे बनाने पर, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म कर दो, मेल और फीमेल कुछ नहीं होता, अब ये कानून बनने वाले हैं, आप लिख लें 10-5 साल बाद कानूनन ये जुर्म बनेगा, जो बात आज एक रेफरेंस के पास मेरे पास मौजूद है, अगर आप चाहें बाद में तो मैं आपको उन सिस्टर से रेफ़र करा दूँ जिन्होंने मुझे ये सारी बात बताई, कि ये जब से ये गेइज़म और होमोसेक्सुअलिटी का फितना आ गया, और इस सदी का ये फितना, अब वो कहते हैं शुरू से ये सेंस ही ख़त्म कर दो, हमने इन्हीं माशरों में आके सीखा देखा कि जी लड़का पैदा होगा तो ब्लू चीज़ें खरीदेंगे, लड़की होगी तो पिंक, सुना हुआ ना, अब इस पे बैन लग रहा है, कहते हैं शुरू से ही लड़का लड़की का नाम ही मिटा दो ताकि बाद में उनको आपस में ताल्लुक कायम करने में बुराई ना लगे। और पहले तो चलिए आप कह लीजिए कि किसी मन चले ने लड़के से लड़के से शादी की, लेकिन पिछली सदी पिछला साल आप 2015 में लंदन में थी, उस वक्त 14 का एंड था या 15 था, ये बारह लास्ट ईयर की बात है, यूरोप में पॉप ने जाकर शादी करवा दी। ये तौरात और इंजील की तहरीफ तो हमने खुद देख ली, अपनी आंखों से सुन भी ली और आंखों से देखी, कान देखी नहीं भी तो सुन तो ली ना, कि अब लड़का लड़का शादी कर सकता है। इट्स अलाउड, इट्स लीगल इन यूरोप नाउ, कैन यू बिलीव, हो गया ना मेरी जान। अब आप देखिए, आप सब इस बात के गवाह हैं, वो कहते हैं ना जो ना खूब जो ना था खूब वही खूब हुआ। शुरू में जो चीज़ बुरी लगती है ना ऐसे से वो खूब होती है, वो एक शेर है कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर, कैसे कि जो ना था खूब यानी कल तक जो मैं अच्छा नहीं लगता था ना आज खूब हो गया। आज आप किसी लड़के को लड़की से मिलता देखें, यानी जिसको हमारे दौर में जिस वक्त हम छोटे थे कह लीजिए या आप उससे भी थोड़ा पीछे जाए, लड़के लड़की की दोस्ती को क्या कहते थे, यारी। यार लफ्ज़ कितना बुरा लगता था, बॉयफ्रेंड का लफ्ज़ गाली लगती थी, गर्लफ्रेंड का लफ्ज़ सुनकर हाथ ठंडे हो जाएं। और आज मैंने खुद माँ को अदा से कहते देखा है, जिस लड़की से मर्जी रोमांस करो बस शादी से पहले मुझे बता देना। और माँ मशवरा देती है बेटे को, जाओ लड़की ढूंढ लो, मेरे से जूतियाँ नहीं पटकती, शादी में करा दूंगी। और वल्लाह ही एक माँ ने कहा, मैं तो इस पर बड़ी खुश हूँ कि मेरे बेटे ने मुसलमान लड़की चूज़ की है, कि काफिर तो नहीं है ना वो। और एक ने तो कहा कि अब तो इस पर ही बड़े खुश हैं कि लड़का किसी लड़की से शादी की दावत दे रहा है, हमें ये नहीं कह रहा इस लड़के से कर दो, ये कानों के सुने हुए लफ्ज़ हैं, ये है जो ना था खूब वो खूब हुआ। तो कल आज से 20 साल पहले लफ्ज़ यारी दोस्ती ये सब आज बदल के नॉर्मल हो गया, तो क्या आज से 5-10 साल बाद लड़का आपका बेटा किसी दोस्त से शादी को कहे तो शादी जायज़ नहीं कर देंगे? क्या करें अब सब कर रहे हैं। ये मैं आपको आने वाले तूफ़ान की खबरें दे रही हूँ, दिल तो बैठ ही रहा होगा लेकिन इट विल हैपन अगर आज हमने सोच का तस्किया ना किया। प्योर अप, प्योर लिव अप योर लाइफ, अपने बच्चों को बेहतरीन तरीके से, अपने आप को बेहतरीन तरीके से, अपने मर्दों की नज़रों को पाक रखने का रास्ता अल्लाह ने हमें इस किताब में दे दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम 7-8 साल की उम्र में बाप के घर से वो तरबियत ले चुके थे कि जब अज़ीज़े मिस्र के घर में गए तो उस औरत ने खुद ही दावत गुनाह दे दी। कुरान में वो पूरा मंजर पेश किया गया कि उस औरत ने दिल फेंका, शौहर को आता देखकर ऐसे बदली कि जैसे कभी मोहब्बत ही नहीं थी, और बाजारी मोहब्बतें ऐसी होती हैं। किस चीज़ ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस औरत के साथ गुनाह करने से रोका? 10 से ज़्यादा उनके उज़र मिलते हैं जब हम तफसीर करते हैं तो दिखाते हैं, हमारे एक ऑनलाइन कोर्स में यानी ऑन साइट पे लर्न नॉर्वे में कोर्स है, तो वहाँ नेक्स्ट संडे से इंशाल्लाह सूरह यूसुफ शुरू हो रही है, नेक्स्ट सैटरडे और संडे से, इसके बाद यानी 15 दिन बाद तकरीबन, तो आप लोग सुनना चाहें तो आप लोग भी ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं कि किस तरीके से यूसुफ कैद में भी थे, ग़ुलाम भी थे, परदेस भी था, अपनों से दूर भी थे, औरत दावत दे रही है, ग़ुलामी भी है, लेकिन उन्होंने कहा कि अल्लाह से डर जाओ। ये तस्किया आज मुझे और आपको अपने नस्लों का करना है, और उनका कब करेंगे? जब हमारा होगा। अपने घर के अंदर से हर वो दरवाज़ा वो रास्ता वो खिड़की बंद करनी पड़ेगी जहाँ से सोचें नापाक होती हैं। आप चूल्हा भी खोल दें और कहें कि गर्मी ना हो, और एसी भी खोल दें और कहें कि सर्दी ना हो, ये कभी नहीं होगा। दिल से हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे, मैं बच्चे का लफ्ज़ बार बार जान के बोलती हूँ, मेरी आदत है बोल रही हूँ, वरना हर छोटे बड़े मर्द औरत सब हम चाहते हैं ना कि हमारी नस्लें पाक रहें। क्या हम चाहते हैं हमारे घरों में जिना के बच्चे हों? आज तो ये तक सुनने में आ गया कि शादी हो रही है और लड़की प्रेग्नेंट है, कैन यू बिलीव? और आपने ये भी नहीं सुना होगा आज तक शायद कि शादी माँ बाप कर रहे हैं और लड़का जब आया तो वो काला हबशी था, क्रिश्चियन था, क्या हुआ? अब ये कहती है तो कर देते हैं फिर, और शादी करनी है तो फिर साथ पूरा इहतमाम भी करना है, मेहंदी की रस्में तक हो रही हैं, लड़की एक नॉन मुस्लिम लड़के से शादी रचा रही है, और माँ बाप क्या करें, अब जो शादियों के अरमान हैं खुद कार्ड बांट बांट के शादी की रस्में करवा रहे हैं, और शादी एक लड़की की नॉन मुस्लिम लड़के से हो रही है। किधर गए हम? और हमारे पास जितना अल्लाह और उसकी किताब का इल्म होगा ना उतना हम जलें कुड़ेंगे, और अगर हम खुद इससे दूर हम कहते इट्स ओके, फिर हम क्या करें? देखिए याद रखिए, हमारा दीन पाकीज़गी का दीन है, इन्नल्लाह तय्यिब ला युक़बलु इल्ला तय्यिब, अल्लाह पाक है नहीं कबूल करता मगर पाक। गंदगी का, नापाकी का इस्लाम में कोई हिस्सा ही नहीं। कोई शख्स जब मुस्लिम होता है ना, कलमा पढ़ता है, सबसे पहला काम जो उसको कहा जाता है ना, जाके गुसल करो। और कौन सा गुसल? गुसले जुनाबत, पूरा गुसल। क्यों? आज तक पता नहीं कितनी दफ़ा उस पर नापाकी की हालत आई होगी, उसने तो नहीं गुसल किया ना, जाके गुसल करो। हज़रत उमर ने जब अपनी बहन से सफ़ा मांगा कि दिखाओ क्या पढ़ रही थी, तो कहा नहीं उमर, तुम नहीं पकड़ सकते, तुम मुशरिक हो, जाओ गुसल करके और फिर दूंगी। तो इस्लाम इतना तहारत सिखाता है कि आज आप हदीसों के बाब खोल के देख लीजिए, हदीस का पहला टॉपिक अक्सर किताबों में किताबो तहारा होता है, तहारत के मसाइल होते हैं, क्योंकि इसके बगैर कोई बात नहीं बनती। पेट में लुकवे जाएं तो हलाल के, नज़रें देखें तो हलाल चीज़ें देखें, दिल सोचे तो हलाल चीज़ें देखें। इस्लाम तो इतना साफ़ सुथरा दीन है। सहाबे कराम की ज़िंदगियों को देखिए ना, बीमार होते थे ना, वहाँ साइकाट्रिस्ट थे ना, वहाँ कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाने वाले थे ना, डिप्रेशन का रिलीफ था, पाक प्योर मुआशरा था। सूखी खाते थे, रूखी खाते थे, लेकिन खुश रहते थे, बीमारी नहीं होते थे। आज जो जितनी बीमारियों की लिस्टें लगी हुई है ना हमारे पास, एक तो वजह यह है कि हमने चूंकि अब अपने आप को किसी जगह एनरोल करा दिया कि अच्छा बीमार हो गए तो पैसे तुम देना, तो फिर अब देना है तो फिर जाके इलाज भी करा लेते, कौन से पैसे देने पड़ने, कोई और देगा। लेकिन एक जो दूसरी चीज़ है ना, वो बड़ी मसले की है। हम हर वक्त अपने ही गिर्द घूमते हैं, यहाँ दर्द है, आँख में दर्द है, कान में दर्द है, टांग में दर्द है। देखिए मैं अल्लाह ना करे किसी के खिलाफ नहीं हूँ कि जो बीमार हैं या कहते हैं हम बीमार हैं वो गलत है, रीज़न नहीं समझते हम। हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, हमारे खाने पीने के स्टाइल ठीक नहीं है, हमारे सोने और जागने के औकात ठीक नहीं है। हम सीधे हाथ की बजाय अगर उल्टे हाथ से खाते हैं तो कह लीजिए कि हम खुद बीमारी के लुकमे पेट में डाल रहे हैं। हदीस में आता है कि बाएं हाथ से जब कोई खाता है तो शैतान उसके साथ खाता है, और जब शैतान इंसान के साथ खाएगा तो क्या वो उसको अच्छी बात सिखाएगा? नहीं सिखाएगा। अगर हम वाकई कुरान और सुन्नत के आयने को अपने सामने खोल लेंगे ना, तो इंशाल्लाह हमें इस चीज़ की समझ आएगी कि हमारी सोच, हमारा दिल, हमारी आँख, हमारे कान और हमारी ज़ुबान, ये सब कब ठीक होंगे? जब हम अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़ों पर चलेंगे। इसके बग़ैर ये चीज़ें नहीं हो सकती। तो अगर आप और मैं एक पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करने का इरादा रखते हैं ना, तो हमें अपनी सोचों को पाकीज़ा करना होगा। सोच को पाकीज़ा करना है तो आँख को पाक करना पड़ेगा, आँख को पाक रखना है तो ज़ुबान को पाक करना पड़ेगा, निगाह को पाक करना पड़ेगा। इसी को तज़किया कहते हैं। कम अज़ कम 3 से 4 बार ये कुरान पाक में नबी सल्लम के नाते से लफ्ज़ आ गया कि युअल्लिमुहुमुल किताब व युज़क्कीहिम। तज़किया किया था अल्लाह के नबी ने सोसाइटी का। आप कहते हैं ना आपकी बातें तो ठीक लग रही हैं, लेकिन हाउ वी कैन इम्प्लाई देम, कैसे करें? हालात ख़राब है, आपको क्या पता कितने फितने हैं और हमारे बाहर के माहौल क्या, ये वो। मैं आपको कहती हूँ कि आप नबी सल्लम के पैदाइश के दौर में ज़रा झांक के देखें किसी सीरत की बुक के नाते। जो आज के हालात है इससे कई गुना वर्स्ट हालात है। बाकी सबको मैं स्किप करके सिर्फ ये तत्हीर का जो मौजू है ना आज, इसको देख ले, तो हालात इतने ख़राब थे कि जब कोई बच्चा पैदा होता था, बिलीव कीजिए, आप अपने ऊपर लेकर सोचें, आपके ख़ानदान के किसी घर में एक बच्चा पैदा होता है, तो जब बच्चा पैदा होता था तो काहिन को बुलाते थे, ज्योतिषी, जो अर्राफ होते थे ना, क्याफाशनास, वो बच्चे के फीचर्स को देख कर, उसके हाथ पाँव को देख कर पहचानता था ये शहर में किसका बच्चा। पैदा होने करने वाली औरत को नहीं पता होता था कि ये किसका बच्चा है। एक एक औरत के पास 10 मर्द के ताल्लुक होते थे। ये 10-8-10 किस्म के निकाह मौजूद हैं, जिसमें आज भी इंडिया में कुछ नाम है, जैसे नियोक है और कुछ और है। मर्द अपनी बीवियों को खुद बड़े मर्दों के पास भेजते थे जो बड़े लीडर टाइप थे या बड़े पैसे वाले थे या जीनियस थे, कि जाओ उनसे अक्लमंद बच्चा पैदा करके लाओ। आज अल्लाह ना करे अभी ये कानों में बातें इस तरह खुल के नहीं सुनी। इतना गंदा मुआशरा था वो। लोग आके अपने नबी से पूछा करते थे, अल्लाह के नबी हमें हमारे बाप का नाम बता दें, तो आप कहते थे अपनी माँ को जलील करवाते हो, तुमने अपनी माँ का पर्दा खोलना है। इस तरह के हालात थे। लेकिन एक शख्स उठता है, कहाँ से अल्लाह ने उसको उठाया, और कोहे सफ आप देखिए कि गारे हिरा से वो एक शख्स आए थे ना, वो कहते ना कि उतर कर हिरा से सोए हरम आया। वो क्या थी? एक बिजली की कड़क थी या क्या था कि जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया? द मैन हु शोक दर्द। हम तो उस नबी की नस्ल, हम तो उस प्यारे नबी की नस्बत रखने वाले लोग हैं। अगर हमें अपने नबी की कदर आ जाए, अल्लाह की कसम कभी हम अपनी अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसी कोई चीज़ लाए ना कि जिसको देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आ जाए कि वो होते तो क्या करते। जब इस्लाम कबूल के करता तो बैत लेता था, उस वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, और बैत सिर्फ़ नबी की होती है, किसी की बैत नहीं हो सकती जब तक कि वो इमाम हुक्मरान भी ना हो और साथ मजहबी लीडर भी ना हो। एक औरत मुसलमान होती है, उसने कहा कि मेरे से भी बैत लेगी, तो उसने पर्दे के पीछे से अपना हाथ अंदर किया। देखिए अब ये बातें आज आप अपने बच्चों से कहेंगे, वो कहेंगे हो फुलिश, पता नहीं क्या कुछ कोई कह देगा। आज हमने इस्लाम को इतना गरीब मिस्कीन और मुफलिस और गरीब दिखाया कि अब हमारे बच्चे कहते हैं हूँ वी डोंट नीड इट टेक इट, हत्ता के अब तो ये आवाज़ें आ गई कि लोगों को जन्नत भी नहीं चाहिए। वो कहते क्या करनी है वो जन्नत, इट्स बोरिंग, नो फन, नो म्यूज़िक, नो कॉन्सर्ट, वी डोंट नीड योर जन्नत। ये मेरे कानों के सुने हुए लफ्ज़ हैं कि आज लोग ये कहते हैं जन्नत भी ना लोग क्या करनी है, तुम उस जन्नत को लेने के लिए अपनी इस दुनिया को जहन्नम बनाते हो, मिलनी को न्यान सींग फ्रेंड के साथ तुम बातें करते रहते हो, गो हेड, हमें नहीं चाहिए जन्नत। क्यों? क्योंकि आज सोच गंदी हो गई, तस्किया नहीं रहा, तत्हीर नहीं हुई। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आप देख लीजिए, हाल ये था कि औरत पर्दे के पीछे से हाथ अपना अंदर दे रही है कि शायद अल्लाह के नबी मेरे हाथ पे हाथ रख के वो बैत के लफ्ज़ पढ़ेंगे। सूरह मुमतहिना में वो मौजूद है कि जिसमें बैत के लफ्ज़ मौजूद थे, तो आपने अपना चुमू फेर के कहा कि औरत हाथ पीछे कर ले, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गैर औरत का हाथ नहीं देखता। क्या किया करते थे? कई तरीके थे, एक दुपट्टा या एक कपड़ा पकड़ कर पर्दे के एक तरफ से आप पकड़ लेते और उस पर्दे कपड़े का दूसरा कोना उधर उस औरत को हाथ में दे देते, वो नबी तो शेक हैंड नहीं करते थे। आज हमारे लिए शेक हैंड इट्स ओके, क्या करें मजबूरी है, डॉक्टर से शेक हैंड ना किया तो क्या होगा, कस्टमर से ना किया तो क्या होगा, क्या होगा आप बताएं? आई एम अ मुस्लिमा, मेरा हाथ किसी गैर मर्द को टच करे, ये मेरे लिए हाथ में जलता हुआ अंगारा लेने से ज़्यादा तकलीफ़ की चीज़ है। हदीस है, खुलासा बता रही हूँ आपको, गैर मर्द से गैर औरत या गैर मर्द औरत से मर्द का हाथ टच होता है ये तो जलता हुआ अंगारा। अब आज कहते हैं ये क्या बेकार बातें, ये हमने अपना इस्लाम इतना ज़्यादा अजनबी कर दिया, एलियंस कहलाने लगे। आज आप सच्चा इस्लाम दिखाएं लोग आपको बेवकूफ़ कहेंगे। गौरबा गौरब, अल्लाह तक के नबी ने कहा कि इस्लाम जब शुरू हुआ था तो गरीब था, अजनबी था, और अनकरीब ये फिर अजनबी हो जाएगा। आज आप सच्चा दीन पेश करें लोगों को कि देखें ये कुरान की आयत है, ये हदीस की, कहते छोड़ो पता नहीं ठीक भी हैं कि नहीं, एक से एक फितना उठा। अगर कुरान और सुन्नत की नज़रों से आज मैं और आप सोसाइटी को देखें, इतने जम्स दिखें कि हम सांस भी ना लें, जैसे पानी का ग्लास आप पी लेते हैं लेकिन अगर साइंसदान देखेगा तो कहेगा इसमें 100 जरासीम है, उसको क्यों दिख रहे? क्योंकि उसके लेंजेज हैं। हमें क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि हम अपनी आँख से दिख रहे हैं। जब मैं और आप वक्त और माशरे की आँख से दुनिया को देखते हैं, हम कहते हैं इट्स ओके, सब ठीक है। कैसे ठीक है? आप कहते हैं ठीक, मैं तो नहीं इसको ठीक कहता। क्यों? क्योंकि आप कुरान के आईने से देख रहे हैं, हदीस के आईने से देखते हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी को, अपने रिश्तों को, अपने मामलात को, ताल्लुकात को कुरान और सुन्नत से देखें, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी ज़िंदगी हयातन तयबा है, ये पाकीज़ा ज़िंदगी के तरीके नहीं है। हमें इसके ऊपर अपने आप को अभी से ढालना है। देखिए मैं और आप, अब इसका आगाज़ कहाँ से होगा? अब आप देखिए बीमारी तो देख ली, तो इलाज क्या है? इलाज की ज़रूरत है कि नहीं है? देखिए डॉक्टर बनने के लिए 5 साल पढ़ना पड़ता है, 5 साल कम से कम, फिर उसके बाद कोई 5 साल की प्रैक्टिसें करके कोई 10 साल के बाद फिर आपकी नब्ज़ देखने के काबिल होता है। फिर भी नहीं होते, फिर भी वो बेचारे टेस्ट करवा के आपकी बीमारियों को छानते हैं ना, राइट? फिर इलाज होगा ना, टेस्ट कितने कराते हैं फिर गोली एक देते हैं ना, ऐसे ही है ना, टेस्ट ही ज़्यादा महंगे मुश्किल होते हैं, दवा तो एक गोली आप में से कईयों को पता होगी सर दर्द एस्पिरिन से ठीक हो जाता है, राइट? ऐसे ही है ना। अब जब एक डॉक्टर बनने के लिए 10 साल पढ़ के फिर आप बीमारियां बताते हैं, अब मैंने ये चीदा चीदा जो बातें की, वल्लाही मेरा मौजू इनमें से कोई एक ख़ास मौजू नहीं था, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिल के दर्द से वो एहसास को ज़िंदा करना चाहती हूँ कि हमें एहसास होना चाहिए कि हम कैसी ज़िंदगियाँ बसर कर रहे हैं। सोच, आँख, कान, नाक, इसका अगर तस्किया ना हुआ तो हमारी आने वाली नस्लों में नस्ब तक गुम जाएंगे, हमारे घरों में फिर नॉन मुस्लिम बच्चे पैदा होंगे। ये तो आपने सुन ही लिया ना कि आप तो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम से शादी का कोई फ़र्क ही नहीं रह गया, आगे जाके पता नहीं और क्या क्या हालात होने वाले हैं। वजह क्या? कि हमने अल्लाह और उसके रसूल की बात को नहीं समझा। असल जो बात है, वो शख्स जो अरब में आए और उसकी तकदीर बदल दे, राइट? मैं और आप आज उसकी उम्मती हैं कि नहीं? कितने लोग हैं आप में से जो ये सोचते हैं कि इट्स फाइन, कोई कहता है मुझे अल्लाह के नबी की उम्मती हूँ तो ठीक है, नहीं है तो मैं किसी और से भी जुड़ सकती हूँ। कोई एक भी आप में से सोच सकता है? क्या आप में से, मेरे में से कोई ये सोच भी सकता है कि हम नबी सल्लम से अपनी निस्बत तोड़ दें? क्या नबी से मोहब्बत हमारे खून में नहीं मिली हुई? क्या अपने बाप से ज़्यादा नबी से मोहब्बत नहीं महसूस होती? उस नबी की ज़िंदगी को देखकर आज उम्मत की ज़िंदगी को देखे, हम इस वक्त गोरों की भी कोई बात नहीं कर रहे, कालों की भी नहीं कर रहे, हम क्रिश्चियन ज्यूज़ की भी नहीं कर रहे, हमें उनसे कुछ नहीं लेना देना, वो जो कर रहे हैं वो जाने। मुझे तो सर हर अपनी बात के दौरान मेरी नज़रों के सामने सिर्फ उम्मत मुस्लिमा होती है। आप मक्का में चले जाएं, आप मदीना में चले जाएं, आप पाकिस्तान में रहें, इंडिया में रहें, या आप अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में आ जाएं, मेरी नज़र में किसी जगह दुनिया के किसी कोने में आप चले जाएं, आप अल्लाह के नुमाइंदे हैं। वी आर एम्बेसडर ऑफ इस्लाम, लोग हमें देखते हैं। और जब हम अल्लाह के दीन पे अमल नहीं करेंगे, किसको बुलाएंगे, किसको दावत देंगे? मुस्लिम बनो, कहते हैं कौन सा मुस्लिम बनो, ये तुमने एक ख़ास खुलिया बनाया हुआ है, दूसरों का तो ये नहीं है, ये भी कोई होता है? यानी आज कोई ज़रा ढंग से चार सही कपड़े पहन के बाहर निकल जाए तो लोग कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट, दाढ़ी वाले को कहते हैं फनेटिक, फनेटिक मुल्ला, मस्जिद की दौड़। और निकाब तो खैर अब इशू ही ख़त्म हो गया, अब तो स्काफ और हिजाब ही अभी बहुत चुभ रहा है। लोग कहते हैं भाया कोई चीज़ नहीं, अरब कल्चर था। और अभी चंद दिन पहले किसी ने मेरे इल्म में इजाफा किया कि अब ऐसे भी फतवा फरोश आ गए कि जो कहते हैं कि मिसवाक तो इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं, वो तो अरबी कल्चर था, वो बदुओं का ब्रश था, और दाढ़ी और मिसवाक और ये जो इस्लामिक रिचुअल है भर मला उसका मजाक उड़ाया जा रहा है स्क्रीनों पे बड़ी बड़ी आकर कि इस डोंट वरी, इस्लाम को इतना पीछे ना डालो। वो कहते हैं सूद कुछ नहीं होता, सूद सब ठीक होता है, और फलां सब ठीक होता है, वो सब। तो आप जिसको मर्ज़ी ठीक कहते जाएं, जिसको मर्ज़ी गलत कहते जाएं, आपको किसी ने क्या कहना है? लेकिन मेरा तो इस बात पर ईमान है, आप मशरिक से लेकर मगरिब के कोने तक घूम जाएं, अगर आपको अपने इस्लाम पर मान है, पहली बात है कि आपके दिल में इस्लाम की जड़ें कितनी मजबूत हैं। कल के जो दर्स थे, जो साथी सुन रहे हैं मुसलसल, उन्होंने देखा होगा कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह अगर दिल में नहीं जमा होता ना तो उस पर अमल नहीं होगा हमसे। ये जो कमी है ना, जो रोग है, जो कीड़ा लगा हुआ है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे में लगा हुआ है। आपको अल्लाह की बड़ाई का एहसास हो, अभी आपने सुना ना कि वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, वरीस बहन ने उस पर गौर किया था ना कि लोगों ने अल्लाह की वो कदर ही नहीं की जैसे कि कदर करने का हक है। सच बताइए, अगर अल्लाह की कदर की होती तो आज हमारा ये हाल होता? और वल्ला ही हमने अपने नबी की कदर नहीं की, मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लम का वजूद एक रहमत था हम सब के लिए। अल्लाह ने सारी दुनिया की चीज़ों को जो पेश किया, हमें इतनी नेमतें दी, लेकिन एक नेमत का एहसान जता दिया कि वलकद मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इस बासफ़ीहिम रसूलम मिनहुम, हमने ईमान वालों पर के एहसान किया कि उनको रसूल दिया, उन्हीं में से उनका हम जुबान, उन्हीं का हम नफ्स। कोई जिन नहीं है, कोई फरिश्ता नहीं है हमारा रसूल, वो इंसान थे। अगर आज हम उस रसूल को पीछे डालकर किसी और को आगे ले आए, ये हमारा नसीब है, फिर बदनसीबी की बात है। रसूल से आगे किसी का मुकाम नहीं हो सकता। तो हमें ज़रूरत है अपने दीन को सीखने की। आगाज़ कहाँ से होगा? जब हम खुद और अपनी नस्लों को लेकर चलेंगे, और हम इंतज़ार करते हैं पानी के सर से ऊपर गुजरने का। जब हमारे औलादों के कद हमसे भी लंबे हो जाते हैं ना, तो हमें घूर घूर के देखते हैं, तो हम कहते हैं को वजीफ़ा बता दें, ज़रा बच्चे हिदायत पे आ जाएं। ये बिगड़े बच्चों को भी ठीक करने का कोई वजीफ़ा होता है? तो मैं कहती हूँ इसका वजीफ़ा है, और इसका वजीफ़ा आप है। एक माँ जिसने 9 महीने पेट में रखा बच्चे को, अपने खून के कतरे दे देकर जिसको पैदा पाला पाला, दूध देकर उसको परवरिश की, उस माँ के पास कितनी अपॉर्चुनिटीज थी अपने बच्चे को ठीक रखने की या गलत करने की। पर मसला क्या कि माँ खुद भी तो ठीक हो। अगर आप और मैं चाहते हैं ना कि उम्मत मुस्लिमा का मुस्तकबिल प्योर हो, हयात तैयब हो, तो आपको आज की माँ को प्योर करना पड़ेगा। तो माँ को माँ बनने से पहले, आपके घर में जो गोद के बच्चियाँ ना, ये कल की माएँ हैं, आज इनका तज़किया होगा। पहले तरबियत का एक अंदाज था, शुरू से ही बच्चियों को उन रास्तों पे चलने ही नहीं देते थे जिन पे कोई बाद में रोके। ऐसे ही है ना, माएँ मेरे पास आती हैं, कभी कहती कान में, ये बच्चियों को समझाएं ये अच्छे कपड़े नहीं पहनती, देखो कितने टाइट चुस्त पहनती हैं, फिर मना करें तो नाराज़ होती। तो मैं कहती हूँ ये आज इसने पहली दफ़ा पहने, 16 साल की उम्र में होकर इसने टाइट कपड़े पहने, पहले किधर थी? तब आप ही प्यार से पहनाती थी, ये गुड़िया है, ये डॉल है, ये स्लीवलेस है, ये टांगे नंगी है। अब आपने उसकी सेंस खत्म कर दी। सच बताएं, आप आज भी, मेरा नहीं ख्याल कि औरतों में भी आप अपने जिस्म को खोलकर पेश करें और आप कंफर्टेबल फील करें। हमारे अपने ड्रेस में एक हया है ना, दुपट्टा ले लें, चादर ले लें, स्कार्फ ले लें, ढीले कपड़े पहन लें। औरतों में भी एक हया ज़रूर आती है जब हमारे जिस्म पे नज़र पड़ती है। अजय, अब आप आज बचपन से जब बच्चे बच्चियों के कपड़े एक जैसे कर देते हैं, और जितने स्ट्रेची कपड़े आज के दौर में लोग पहनते हैं, मैं सोचती हूँ ये तो कभी 2 साल की बच्ची को भी लोग नहीं पहनाते थे। एक ख़ास नाम होता था बच्चियों की, जो क्या वो उसके नाम मेरे जहन में आ रहा है, जो लेगिंग्स कहते थे, स्ट्रेची होती थी ना छोटी बच्ची। और मैंने अपने घरों में देखा कि छोटी बच्ची को भी पहना देख के डांटते थे, जो इसको ढीला पजामा पहनाओ, टांगे दिखती हैं, जिस्म दिखता है। स्लीवलेस बच्ची का फ्रॉक, 1 साल की बच्ची स्लीवलेस फ्रॉक पहनेगी, आप कैसे उसको 10 साल का होने पे रोकेंगे? निप द इवल इन द बर्ड, चीज़ को उधर रोक दो जहाँ। देखिए, आप यहाँ से मिसाल है कि हम शिकागो में, हमने यहाँ से मेम्फिस जाना है, क्या आप शिकागो से डायरेक्ट रास्ता शुरू करते हुए गलत रोड ले लें तो कभी भी मेम्फिस पहुँचेंगे? कम अज़ कम डायरेक्शन तो ठीक करनी पड़ेगी ना, ईस्ट नॉर्थ साउथ किधर जाना है आपने? जब रास्ता ही गलत लिया शुरू से, तो पहुंचेंगे तो आप पता नहीं कितने फेर खा के। इस वक्त हमारा हाल ये है कि हमें जन्नत का रास्ता ही नहीं पता, लॉस्ट, खो गए, चलते रास्तों दूसरों पे हैं, और कहते हैं अल्लाह इहदिना सिरातल मुस्तकीम। दिन में 17 बार ये दावत दुआ करके आते हैं हम कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, के अल्लाह सीधा रास्ता दिखा दे, सीधा रास्ता दिखा दे। लेकिन अमूमन ज़िंदगी में जो हमारे हालात है वो देख लीजिए, क्या वो क्या हालात है, हम सब जानते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले, फर्स्ट थिंग, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन, वी नीड टू रियलाइज। अकेले बैठकर, कुरान में एक जगह आता है अकेले बैठ के सोचो, नहीं तो दो दो बैठ जाओ, बडीज बन जाओ, चार चार बैठ जाओ, ग्रुप में बैठ जाओ, लाइक माइंडेड लोगों में बैठकर। इस वक्त साहिब दर्द लोगों को सोचने की ज़रूरत है, हम किधर जा रहे हैं। फ़ाइन तस्खबून, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं तुम किधर जा रहे हो। फ़फ़िर्रु इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ, भाग दौड़ करो अल्लाह की तरफ। सूरह ज़ारियात की मारूफ आयत है, तुम्हारी कोशिशों का रुख अल्लाह की तरफ हो, तुम अपने आप को अल्लाह से जोड़ो, जाना किधर है। आप कहते हैं हम कुछ नहीं करते, खुदा हाफिज, तो अल्लाह हाफिज, एंड क्या है, एंड क्या है, अल्लाह की जन्नत या अल्लाह की जहन्नम। मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी, किसी ने कही, उन्होंने कहा कि तुम्हें जन्नत नहीं चाहिए तो फिर मान लो फिर जहन्नम तो है, देर इज़ नो थर्ड वे। जो कहते हैं ना हमें जन्नत भी नहीं चाहिए, नहीं लेते जी, हम नहीं अच्छे काम करते, जहाँ सब जाएंगे चले जाएंगे, तो या जन्नत या जहन्नम, इधर और, दैट्स इट। कोई इन बिटवीन रास्ता नहीं कि जहाँ आधी गर्मी आधी सर्दी, कभी एक रात अजाब की और एक सवाब की और एक नेमतों की रखी जाए, कि चलो जाओ फिर तुम दुनिया में भी घुले मिले थे, वहाँ भी घुल मिल जाओ। अल्लाह ताला कहते हैं ला यस्तवी असखाब नारी वला असखाब जन्ना। कुरान खोल खोल के ये बातें कहता है लोगों, हल यस्तविल जीना यालमुन वल्लज़ीना ला यालमुन, क्या वो लोग जो जानते हैं और जो नहीं जानते वो बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो डिसाइड करना, वी नीड टू डिसाइड। देखिए, इसको दुनिया की मिसाल से समझिए। आपका बेटा है माशाल्लाह 10 साल का, अब वो आगे से अपने लिए कोई लाइन चूज़ करना चाहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, कि मुझे इंजीनियर बनना है, या वट एवर, आप समझते हैं ना, ऐसे स्टेप्स आते हैं। तो आप उसको क्या कहते हैं कि बेटा यू नीड टू डिसाइड, राइट? सोच लो तुम्हें क्या शौक है, तुम्हारी कैपेबिलिटी क्या है, तुम्हारी इंक्लाइनेशंस क्या है, इट्स फाइन। कभी ऐसा हुआ कि वो कहता है अच्छा डॉक्टरी भी पढ़ लेता हूँ, कुछ दिन उधर चला जाऊँगा, तो कुछ दिन फिर मैं इंजीनियर की क्लास, इंजीनियरिंग की क्लास में चला जाता हूँ। वो क्या बनेंगे एंड ऑफ द ईयर? कुछ तो या डॉक्टर बन जाएंगे या इंजीनियर। ये सोच रहा है कि मैं दोनों बन जाऊँगा, एक्चुअली क्या होगा, ये कुछ भी नहीं बनेगा। ये है आज उम्मत मुस्लिमा का हाल, ना इधर के ना उधर के। मिसालें मैं नहीं देती, बड़ी अजीब सी मिसालें हैं हमारे कल्चर में दी जाती हैं। कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, दो कश्तियों का सवार तो डूबता। वी नीड टू डिसाइड। आप कहते हैं कैसे, हाउ वी कैन स्ट्रगल विद द सोसाइटी। हमें सोसाइटीज़ खुद क्रिएट करनी है। जितने लोग आज माशाल्लाह दुनिया में इस्लाम के नाम पे, और स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज, मैं आप सबको मुबारक दूंगी, आप मुझे दें, अगर हम किसी वेस्टर्न कंट्री में रहते हैं, आई एम प्राउड ऑफ दैट, मुझे कोई गिल्ट नहीं है। मुझे कोई अफसोस नहीं है, आई एम नॉट अशेम्ड ऑन दैट कि मैं किसी नॉन मुस्लिम मुल्क में रहती हूँ। मैं तो कहती हूँ अल्लाह मेरे कदम हर जगह लगवा दे, चले मैं हुज्जत तो बना दूँ कि मैं इस जगह भी अल्लाह तेरा बंदा बन के, तेरी बंदी बन के गई और उनको तेरी बात सिखाई। ये हल नहीं है कि आप सब छोड़ के मक्का चले जाएं, मक्का जाने से भी कुछ नहीं होगा। यहाँ रह कर सोच बदल के, तज़किया बदल के, और इन सोसाइटीज़ का कर्ज़ है हमारे ज़िम्मे कि हमने इनको भी पाक करना है। अल्लाह के नबी ने अगर मक्का से चंद लोगों को लेकर मदीना में जाना होता ना कि चलो तुम बहुत नेक हो चलो छोड़ो मक्का वालों को, तो बहुत होता तो 1 साल 1.5 साल इरादा करते, नियत करते चल पड़ते। 13 साल की जंग लड़ी अल्लाह के नबी ने मक्का में, क्यों? तत्हीर, प्योर द सोसाइटी। आपने खुद भी नहीं पाक सिर्फ होना बल्कि दूसरों को पाक करना है। जिन लोगों ने रात का सेशन अटेंड किया है, और इंशाल्लाह हम थोड़ा सा उस पर भी बात करते हैं एंड पे, कि किस तरीके से आज इन मुल्कों के इकोनॉमिक सिस्टम को प्योर करने की ज़रूरत है। कर्जा कर्जा, बाल बाल तो कर्ज़ों में डूबा हुआ है, और हम मजबूर करके कभी शौक के नाम पे बैठे हैं, कहते क्या करें इंटरेस्ट फ्री चीज़ें ही नहीं है। हम कहते हैं क्रेडिट कार्ड के बगैर गुजारा नहीं और देश नहीं, और कर्ज़ तो लेने ही पड़ते हैं, और अपने पैसों से कौन ले सकता है। अगर ये मेरा और आपका फ़र्ज़ बनता था, अगर हमने इस्लामिक इकोनॉमिक्स पढ़ी पढ़ाई होती, वल्लाह ही मैंने कल के सुबह के किसी दर्स में, 3 दर्स का लूम है माशाल्लाह, उनमें किसी एक में ये बात की थी कि अगर हम मुसलमानों ने अपना इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ा सीखा होता ना, तो आज पूरी दुनिया में नॉन मुस्लिम मुल्क रहते, अमेरिका, कनाडा, चाइना, फ्रांस, वट सो एवर, बट उनके वजीर ख़जाना, समझ गए, मनी अफेयर्स, उन्होंने खुद कॉल करके बुलाना था कि तुम मुस्लिम्स आ जाओ, ये तुम बहुत अच्छे हो, तुम आओ और तुम हमारे वजीर ख़जाना बन जाओ। अब क्या, हाउ इज़ इट पॉसिबल? इट्स पॉसिबल। लाइक हज़रत यूसुफ़ को क्रिश्चियन नॉन मुस्लिम बादशाह ने कॉल करके जेल से बुला लिया कि आप आइए, आप हमारे वजीर ख़जाना बने, क्योंकि जो आप में कैपेबिलिटी वो हम में नहीं है। इस्लाम इज़ अ कम्प्लीट वे ऑफ लिविंग। आपको इस्लाम इतना खूबसूरत इकोनॉमिकल सेटअप देता है, ज़कात को आम कीजिए, सदक़े को आम कीजिए, ज़कात सूद को ख़त्म कर दीजिए, 2-4 साल में पूरी दुनिया इंटरेस्ट फ्री दुनिया बन सकती है, लोन फ्री दुनिया बन सकती है। और ये जो आज दुनिया में भूख नंग और चंद बड़ों की मोनोपोली बनी हुई है, ये सब टूट जाएगी जिस दिन आप इस्लाम को लेकर आएंगे। पर मसला तो हमें अपने ऊपर है कि हम तो भोले भोले बुद्धू, लाशौरी बेशौरी, हमें काम और बहुत है। देखिए मेरा बहुत कड़वा दर्स है आज, मैंने सोचा नहीं था, लेकिन मैं क्या करूं कि मौजू ऐसा है। मुझे माफ़ कीजिएगा अगर आपका दिल दुखे, मैं आप में से किसी को नहीं जानती, शुक्र है चंद चेहरों के सिवा मैं जानती भी नहीं किसी को, लेकिन ये मेरे अंदर का दर्द है। मैं कैसे हयातन तैयबा की बात कर दूँ जबकि आपके इर्द गिर्द गंदगी है। देखिए डॉक्टर को मरीज़ का दिल बड़ा करके बताना ही पड़ता है कि वेरी सैड बट यू हैव कैंसर, बताता है डॉक्टर तो ही मरीज़ सर्वाइव करता है ना, फिर ही इलाज करता है ना। मैं कैसे आपको तसल्लियाँ देके चार देके चली जाऊँ कि नहीं इट्स ओके, नथिंग इज़ रॉन्ग, एवरीथिंग इज़ गुड, जस्ट जाएँ ये वजीफ़ा पढ़ें जन्नत मिल जाएगी, ये खोलें दूसरा दरवाज़ा खुल जाएगा, तीसरा वजीफ़ा पढ़े तीसरा दरवाज़ा खुल जाएगा। खुलेंगे इंशाल्लाह कब? जब सोसाइटी का सोच का तस्किया होगा। हमारा हाल तो मुझे ऐसे लगता है इस वक्त ऐसे है कि मैं गटर के ढक्कन खोल के वहाँ बिठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसकी बू भी आएगी, इसकी गंदगी भी आएगी, जरासीम भी आएंगे, बट यू डोंट नीड टू बी सिक, तुमने बीमार नहीं होना। अगर यही हालात दुनिया के रहे जो हो रहे हैं इस वक्त, और यही हम मुसलमानों की गफलत रही, तो वल्ला ही हर आने वाला दिन पहले से ख़राब आएगा। ये हदीस में लिखा हुआ है कि एक वक्त आएगा कि दुनिया में इतने फितने और आजमाइशें होंगी कि जब कोई शख्स कब्रिस्तान के पास से गुजरेगा तो कब्र वालों को मुखातिब करके कहेगा तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुम ज़मीन के पेट में हो और मैं ज़मीन की पुश्त में हूँ। और एक और रिवायत का खुलासा है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि औलादें इतनी नाफरमान हो जाएंगी, इतनी नाफरमान हो जाएंगी कि लोग बे औलाद शख्स को देख कर रश करेंगे तुम कितने खुशकिस्मत हो, तुम्हारी औलाद नहीं है। और आज वो वक्त आ गया, आज औलादें आंखों के आंसू बनी पड़ी हैं। आप क्यों बेवकूफ़ बन के उनके पीछे अपने आप को रोलते हैं? वो कहते हैं ना सनम मिला ना खुदा मिला, कुछ भी ना मिला, बुत बना के हमने अपने माशरों को पाला, हमें तो अल्लाह भी ना मिला। जो अपनी औलाद के लिए रब को नाराज़ करता है, जो अपने दीन को पीछे डालकर दुनिया बनाने की कोशिश में उन लोगों की मगन है कि जिनको अभी किसी चीज़ को समझना ही नहीं है, तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। और लेकिन मैं ये आप साथ कह दूँ, कोई यूथ में से इधर है कि नहीं है, लेकिन मैं अपनी आज की यूथ का साथ ज़रूर दूंगी। वैसे तो पैदा नहीं हुए थे ना, बच्चा तो पैदा होते ही दूध मांगता है, वो तो फितरत पे थे, कुल्लू मौलूद यूलदुल फितर। ये हमने बिगाड़ा, हम जिम्मेदार हैं, हमने उनको सोच ही नहीं दी, हम खुद अनअवेयर थे, हम खुद माल कमाते रहे, हमारे बच्चे रुलते रहे। मैं ऐसी सिस्टर को जानती हूँ, 70s के अंदर होंगी, तो जब बैठती हैं तो छम-छम रोती हैं। क्या हुआ? कहती इस मुल्क में आके सब कुछ मिल गया, औलाद चली गई। मैंने कहा क्या हुआ, मुझे समझाए। कहती जब आए पाकिस्तान से लुटे पुटे आए थे, सब बेच बाच के आए थे, फिर क्या हुआ इधर आके मियाँ ने काम शुरू किया तो मैं भी उनके साथ काम करती, सारा सारा दिन काम करते थे दोनों मियाँ बीवी, रात 10-11 बजे घर आते थे, तो बच्चे स्कूल से मेड मेड से इधर उधर कर कर आके सो सुला चुके होते थे। कहती सोचा ही नहीं, देखा ही नहीं कि हमारे बच्चों की सोच गए, यंग हुए, एक इधर निकल गया एक उधर निकल गया, अब तो इस्लाम से निकले पड़े हैं। कल भी सुनाई थी बात, आज लोग फंक्शनली इस चीज को डिक्लेयर कर रहे हैं कि आई वॉन्ट टू अनाउंस दैट आई एम नॉट मुस्लिम एनी मोर। ये वाक्य मैंने सुना, एथियस्ट बनने पे पार्टी रखी, आई वॉन्ट टू डिक्लेयर टू माई फ्रेंड्स कि आई एम एथियस्ट नाउ, तो किसी और से सुनना है तो ये खुशखबरी मुझसे ही सुन लो, क्या बनेगा हमारा। आप देखिए कि ये नबी सल्लम को सामना तो दिखाना है ना, सामना तो करना है ना क़यामत के दिन। तो आज मुझे और आपको इसका एक इलाज है, सिंपल सा एक टेबलेट है, अच्छा डॉक्टर थोड़ी गोली देता है और इलाज ज़्यादा अच्छा होता है, एक इलाज है कि वापस आ जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों पूरे के पूरे अपने दीन में दाखिल हो जाओ। एक पाँव अंदर एक बाहर ख़तरा है, कश्ती के अंदर पाँव और एक बाहर हो डूब जाएंगे, गाड़ी चलती में आप एक पाँव बाहर अंदर रखें क्या हाल होगा, गरम आधा ठंडा जिस्म करें बीमार हो जाएंगे। आज असल में हमने इस्लाम का वो रूप नहीं देखा, मुझे तरस आता है वल्लाही, मुझे किसी पे गुस्सा नहीं आता, जितने मुस्लिम्स को मैं आज ऐसी ज़िंदगी बसर करता देखती हूँ ना जिसमें खुदा फरामोशी भी और ख़ुद फरामोशी, तो मुझे उन पे तरस आता है कि इनको किसी ने क्यों नहीं बताया। खैर तो बहुत है, रास्ता नहीं मिला, क्योंकि वही बात है जैसे कुरान में आता है कि वो बड़े कहेंगे हम खुद भटके हुए थे तुम्हें क्या सिखाते। पैदा होते ही हमारे बच्चे को अगर ये सोच दी जाती ना कि बेटा तुम उम्मत मोहम्मद का एक फ़र्द हो। आज भी मैं लोगों की गोद में बच्चे देखती हूँ, आप में से किसी के, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, मैं प्यार करती हूँ, तो लोग सोचते हैं कि पता नहीं मैं क्यों प्यार कर रही हूँ, तो मैं उनको अक्सर कहती हूँ कि मैं आपका बच्चा समझ के नहीं, मैं इसको उम्मत मोहम्मदिया का एक बच्चा समझ के प्यार कर रही हूँ। शायद यही बच्चा मोहम्मद बिन कासिम बन जाए, चाहे यही बच्चा हसन और हुसैन जैसी काम कुर्बानियाँ देकर इस्लाम के लिए आगे बने, तो वी नीड टू स्ट्रगल फॉर दैट। अभी भी बात इतनी नहीं बिगड़ी, वी नीड टू हैव करेज, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह भी हम जिंदा हैं, अल्लाह का शुक्र करें, मायूस ना हो। आने वाला दौर इस्लाम का दौर है, हमारी इतनी कोताहियों और कमियों के बावजूद भी देखिए कि इस्लाम इज़ द मोस्टली स्प्रेडिंग रिलीजन इन द वर्ल्ड। आज यूरोप ने डिक्लेयर कर दिया है कि 2020, यानी ये 16 तो आ गया ना, 2020 सिर्फ 4 साल बाद यूरोप में मेजॉरिटी जिस रिलीजन की होगी वो इस्लाम की होगी। एक तो मुसलमानों के बच्चे दूसरों की नस्बत ज़्यादा हैं, एक कन्वर्शन हो रहा है, रिवर्ट जो आते हैं उनको देखिए, वो तो मेरे से बहुत ज़्यादा जोश से बात करते होंगे क्योंकि उन्होंने कुफर और गंदगी देखी होती है। एक मैं मस्जिद में थी, इधर अमेरिका की बात है, ह्यूस्टन में, तो हम नमाज के लिए कहीं रुके तो लेडी साइड के नोटिस बोर्ड पे एक कहानी लिखी हुई थी और उर्दू में उसका ट्रांसलेशन था, खैर मेरी नज़र पड़ गई या इंग्लिश में थी बट एवर जो भी थी, तो वो कहानी का खुलासा क्या था, एक बच्ची की तरफ से, एक औरत की तरफ से थी और उसने कहा था कि मेरी इस कहानी को पढ़ लें शायद आप में से किसी की ज़िंदगी बच जाए और आप वो गलती ना करें जो मैंने की। फिर उसकी स्टोरी क्या थी कि वो एक मुस्लिम बच्ची थी और उसको अपने किसी साथ पढ़ने वाले या रहने वाले नॉन मुस्लिम लड़के से मोहब्बत हो गई। खैर आज से ये भी कोई 8-10 साल पुरानी बात है, इसलिए ये बातें अभी आपको थोड़ी हो सकता है आउटडेटेड ही लगें। तो उसने लिखा हुआ था कि मैंने अपने पेरेंट्स को फ़ोर्स किया कि मुझे इस बच्चे से, मुझे इस लड़के से ही शादी करनी है, तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि एक नॉन मुस्लिम के साथ शादी करो, वट एवर। किस्सा मुख्तसर कहती कि मैं उस लड़के की मोहब्बत में अंधी थी तो मैंने अपने घर वालों को छोड़ दिया, उसके साथ भागी, कोर्ट मैरिज की, अब मैं अपने घर वालों से नहीं मिल पा रही और मैं उस लड़के के साथ आ गई। कहती है कि बस ये मेरी ज़िंदगी का कह ले कि आखिरी दिन था जब तक वो लड़का मुझे अच्छा लगता था, थोड़ी देर मिले बाहर मिले अच्छा ही लगता है ना बंदा, जब मैं उसको घर में रहकर उसको साथ मैंने देखा और जो मुझे उसकी हैबिट्स और उसकी गंदगियाँ दिखी तो मुझे उससे लम्हा लम्हा चिढ़ होने लगी। शराब के नशे में धुत आता, कहती बिस्तर पे वॉमिट करता था, उसकी गंदगी थी। इतना उस बंदे को मैंने करीब से देखकर जो उससे गंदगी देखी, लेकिन मैं पीछे नहीं जा सकती थी। यानी उसकी दिल फाड़ने वाली कहानी थी। और उसने उस मैन पे लिखा था, उन तमाम मुस्लिम बच्चियों को जो किसी नॉन मुस्लिम की मोहब्बत का शिकार हो, एक दफ़ा मेरी ये कहानी पढ़ लें। अब माँ बाप कबूल नहीं कर रहे, वो लड़का छोड़ के चला गया, क्या कहानियाँ हुई, और आज वो खड़ी मुँह देख रही है। इस्लाम पाक मज़हब है, हर मौके पे तो तहारत है। आप देखिए, दिन में 5 दफ़ा का वुजू और गुसल और जुमे का गुसल। इस्लाम तो अंदर से भी पाक है, बाहर से भी पाक है। अल्लाह के नबी सल्लम घर से बाहर से जब घर आते, पहले मिसवाक करते, फिर बीवियों के पास जाते। आज अगर एक मर्द के मुंह से आपको सिगरेट की बू आती है, शराब की बू आती है, उसको क्या हक है अपनी बीवी के पास आने का? अल्लाह के नबी अपनी बीवियों को इस चीज़ पे वक्त देते थे कि जब कभी बाहर से आना, पहले बच्चे को घर भेजते कि अल्लाह के नबी आ गए हैं, वो आप घर को साफ़ सुथरा करें, ख़ुद को साफ़ सुथरा करें, फिर घर में जाते थे। इस्लाम तो हर तरह से पाक दीन है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें इसकी कदर की तौफीक दे। आप इस सफ़र को शुरू करना चाहते हैं कुरान और सुन्नत, और ये हमारा मोटो है शुरू से। आप सुन, शुरू में मैं आई तो बात हो रही थी, आप कौन है हम नहीं जानते, स्क्रीन नहीं चल रही, अगर आप चाहेंगे तो मैं कंप्यूटर से आपको बाद में दिखा देती हूँ रुखुदा करके। लेकिन हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसको नूरुल कुरान कहते हैं। ये क्या है? कोई फ़िरका नहीं, कोई मसलक नहीं, कोई सोच नहीं, कोई गिरोह नहीं है। हमारा एक ही मैसेज है कि इनलाइटन द हार्ट विद द नूर ऑफ अल कुरान। कुरान का नूर दिलों में भर दें, हाथों में, ज़िंदगी में, रिश्तों में नूर आ जाएगा। हम छोटे छोटे कोर्सेज ऑफ़र करते हैं, बड़े भी, फुल टाइम, शॉर्ट टाइम, जिसमें हम कंप्यूटर क्लासेज हैं, पैलटॉक का एक मीडियम यूज़ करते हैं, मिक्सलर है, VizIQ है, जो लोग कंप्यूटर फेमिलियर है उनको ये पता है, स्काइप है, इसी तरह ये आपका अमेरिका के फ़ोन नंबर जिसको आप कॉन्फ्रेंस कॉल कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो मीडियम आप यूज़ करना चाहें उसके लिए आप वेबसाइट विज़िट करते हैं। इंशाल्लाह ये कार्ड के नीचे आप बाद में देख सकते हैं, यहाँ वेबसाइट है nurulquran.com, तो उसमें डिटेल्स हैं कि आप ऑनलाइन कोर्सेज़ कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऑन साइट पे डिफरेंट जगहों पे क्लासेज हैं, जिसमें अटलांटा, जो आपसे ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पे एक ऑन साइट कोर्स चल रहा है, एक नहीं बल्कि माशाल्लाह 2-3 कोर्सेज हैं, लेकिन वहाँ इंस्टीट्यूट हमारा बना। फिर इसी तरह से नॉर्वे में आज से 5 साल पहले तकरीबन वहाँ इब्तदा हुई, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ स्कूल रन हो रहा है और बच्चों का कोर्स स्कूल जो है वो प्रोसेस में। UK में क्लासेस होती हैं, पाकिस्तान में हैं, फ्रांस में हैं, जर्मनी में, यानी ये वो चीज़ें जो हमारे अंडर हैं, बाकी इर्द गिर्द से लोग जिसको भी फ़ायदा दें। तो इसके अलावा तीसरी चीज़ जो है वो हम लोग टेलीफोन से क्लासेस देते हैं, जिसको व्हाट्सएप क्लासेस बोलते हैं। आज मेरा लिए हर बंदा व्हाट्सएप से आगा है। आप लोगों में से अगर किसी ने अपना नाम गेस्ट लिस्ट में नहीं भी दिया तो दे दीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको एक इनविटेशन भेजेंगे। सिंपल सा, आप किसी भी ग्रुप में ज्वाइन होंगे। अगर आप अपनी चॉइस देना चाहें तो बाद में सिस्टर शिवाना इधर मौजूद हैं, सिस्टर नादी हैं, जो भी हेल्प कर रहे हैं इधर माशाल्लाह, तो आप इनसे रब्ता करें, आपको किसी न किसी ग्रुप में इन्वाइट करेंगे। एवरी डे एक शॉर्ट रिमाइंडर, छोटा सा, जिसको आप कह सकते हैं कि तज़किया का टॉपिक हो सकता है, लेक्चर हो सकता है, शॉर्ट कोर्सेज, हत्ता कि फिर स्टेप बाय स्टेप उसमें हम आपको तफसीरुल कुरान, हिफ्ज़ुल कुरान, मेमोराइजेशन, आपकी चॉइस है आप कौन सा पैकेज चूज़ करते हैं। 100% फ्री क्लासेज हैं जस्ट, लेकिन ये कि आपने कमिटमेंट शो करनी है तो उसके लिए अलग रूम्स होते हैं। एज अ लिसनर लेना है तो नो प्रॉब्लम, आप चल सकते हैं। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन हैं, अगर आपको मैं अभी बताऊँगी तो इतना समझ नहीं आएगा, बाद में आप लोग इंशाल्लाह एक दूसरे से हेल्प ले सकते हैं और आपकी मदद की जा सकती है। ऑन साइट पर इधर भी इन लोगों से बात हुई है, अगर ये जनवरी जो आपने क्लास शुरू कर रहे हैं, आपकी संडे को होती है, संडे को ये सिस्टर शिवाना लोग मिलते हैं, इनको कल एक पैकेज दिया है कि अगर आप लोग घर से थोड़ा सुनकर एवरी संडे यहाँ मिल के डिस्कशन करें तो आप इनसे भी बात कर सकते हैं। लेकिन बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, किसी से पढ़ें, आप किसी और इदारे से भी पढ़ सकते हैं, जो कुरान और सुन्नत की दावत देते हैं, मोटिव ठीक है, आप जाइए सीखिए। मैं नहीं कहती आप सारे नूरुल कुरान पे आएँ, मुझसे ना सीखें, बिल्कुल ना सीखें, मुझसे ना सीखें, मेरे कहने पर सीख लें तो मेरा अजर शामिल होगा, लेकिन अपनी ज़िंदगी को ज़ाया ना करें। जो शख्स कुरान को सीखे समझे बगैर मरता है, मुझे उसके मरने से ज़्यादा इस बात का गम होता है कि इसने दुनिया की इतनी खूबसूरत चीज़ नहीं पढ़ी जिस कुरान को अल्लाह ने हमें दिया। इसके अलावा यह है कि हमारे पास कुछ चीज़ें आपके लिए प्रोडक्ट में है इस वक्त।
नकाब के बारे में मैं कल भी पूछना चाहती, एक्चुअली टाइम नहीं मिला आपसे।
जी जी,
किस हद तक इस्लाम हमको चेहरे की नकाब के पाबंदी के बारे में बताता है? जी, कोई
جی ان کا سوال شاید آپ نے سنا لیکن ریکارڈنگ میں آ جائے. تو یہ پوچھتی ہیں کہ چہرے کے نقاب کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے, حدیث یا قرآن دونوں یا صرف قرآن؟
کتنی پابندی ضروری ہے؟
دیکھیے میں اس کا اکثر ایک جواب دیتی ہوں, آپ کو بھی دے دیتی ہوں. ماسٹرز کے لیول کا جو سوال ہوتا ہے نا, اس کا جواب کس کو سمجھ آئے گا؟ جو بی اے کر چکا ہو. ایسے ہی ہے نا ہماری زبان میں, بی اے کی کتابیں اس کو سمجھ آتی ہیں جس نے ایف اے کر لیا ہو. اب پریپ یا پرائمری کا کوئی بچہ آپ سے اگر ماسٹرز کا سوال کرے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی. بس اتنی بات میں بات کیا نکلی, چہرے کا نقاب اس کو سمجھ آتا ہے جو پہلے باقی جسم کا حجاب شروع کر دیتا ہے. آپ سٹیپ بائی سٹیپ آگے آئیں, آپ اپنے آپ کو چنو. نہیں میں آپ کو نہیں, میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں آپ کی.
کس حد تک اسلام ہم کو اس چہرے کے نقاب کی پابندی کے بارے میں حکم دیتا ہے, اور یہ کہ کیا اس کے گناہ اور کیا اس کے ایکسیپشنز ہیں اور کیا اس کے.
جی میری جان میں اسی طرف آ رہی ہوں, آپ میری بات پوری کرنے دیں مجھے. آپ دیکھیے کہ چہرے کا نقاب وہ کرے گا ٹھیک طرح سے, یا اس پہ فرض ہے جو پورے دل دماغ کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حکموں پہ چلاتا ہے کرتا ہے. اور اب حجاب تک تو وہ آ چکا ہے, دیکھیں نا آپ ابایا پہن لیتے ہیں, آپ حجاب پہن لیتے ہیں, اب ایسے ایسے آپ نقاب پہ آتے ہیں. آپ کے ایمان کے ساتھ اس کا تعلق ہے. میں اس پہ آپ کو ایک لائن نہیں کہہ سکتی کہ یہ فرض ہے, یہ سنت ہے, یہ نفل ہے, میں نہیں بولوں گی, کیونکہ آپ مجھ سے فتویٰ لیں گے, دوسری کہیں اور جائیں گے, وہ آپ کہیں گے دیکھیں 10 دلائل موجود ہیں. یہ فتووں سے نہیں ہوتا, یہ تقوی سے ہوتا ہے. ابھی آج ہم نے موضوع تھا نا ہمارا کہ پیور سوچ, کلین. جتنی آپ کی سوچ پاک ہوتی جائے گی نا, جتنا آپ کا تزکیہ ہوتا جائے گا, آپ اتنا خود کو چھپانا چاہیں گے. بے لباس ہونا جو ہے نا, یہ غیر فطری ہے. چھوٹا سا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی جب آپ کپڑے چینج کریں تو جسم کو سکیڑتا ہے. جب آپ کے اندر حیا رہے گی نا تو آپ اپنے آپ کو چھپائیں گے, دن بدن آپ اپنے آپ کو آگے سے آگے کرتے جائیں گے. اور اگر ایک عورت ہے وہ ابھی دوپٹہ بھی نہیں لے رہی تو نقاب تو اس کو ٹو مچ لگے گا نا. تو اس کے لیے دعا مانگے, یہ فرض ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں نہیں کچھ کہہ رہی آپ کو, لیکن یہ فرض, یہ بات, یہ حکم اس کو سمجھ آئے گا جو پیچھے کے سٹیپس کر چکا ہے. دوسری بات یہ, ماشاء اللہ ہماری بہن نے تو ایک عام طور پہ سوال کیا نا, اگر کوئی بھی باہر سے یہ بات پوچھے نا کہ کوئی سوال یہ پوچھ کے بتا دیں, رائٹ, تو میں اکثر کہتی ہوں کہ چہرے کے پردے کا سوال وہ خود پوچھے جس نے خود کرنا ہے, دوسرے کسی کے لیے نہیں پوچھنا چاہیے. بس آپ کے میری دوست نے کہا ذرا پوچھ کے آئیں درس میں جا رہی ہیں کہ چہرے کا پرد فرض ہے کہ نہیں, تو آپ کہیں کہ آپ خود پوچھیں, میرا نمبر دے دیں انہیں کہ آپ خود پوچھیں. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں آج یہ وہ دو چار ٹاپکس ہیں جس کو کنٹراورسل کر کے ہم نے اسلام کو بہت زیادہ تماشا بنا دیا. تو میرا خیال ہے کہ میں نے بات کا جواب دے دیا. آپ جتنا فطرت پہ رہیں گے آپ کا اپنا اندر اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا, آپ اللہ بھی تو پردے میں ہے نا, تو آپ اپنے آپ کو چھپائیں گے. اور اگر آپ چہرہ کھولتے ہیں, مثال دیتی ہوں دوسری طرف کی بھی بات کر لیتے ہیں, تو پھر آپ چہرے پہ کریم بھی نہیں لگا سکتے. پھر خوبصورت سجے ہوئے میچنگ حجاب, موتی سلمے ستارے لگے ہوئے حجاب, پھر وہ نہیں پہن سکتے. جو لوگ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے, جو چند آئمہ کرام کی رائے ہے اس میں, اور ان کے پاس بھی دلائل موجود ہیں, لیکن اس پہ تو ہر ایک پھر متفق ہے کہ وہ حجاب ایسا ہوگا کہ جس کو دیکھ کر کسی کو یہ نہیں فیل ہوگا کہ یہ کوئی بہت زیادہ خوبصورت عورت ہے. وہ تو ایسے جیسے گھر پہ جس حال حلیے میں ہوئے آپ اس میں چل پڑتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ کچھ پوچھنا.
مطلب میں نے جب حجاب کا سوچا تھا تو یہی تھا کہ جس کو جتنی اللہ سے محبت ہوگی وہ اس کے ڈریس اپ میں وہ دکھے گا, جو جتنا قریب ہوتا جائے گا اس کا حجاب پردہ سب کچھ ہو جائے گا. تو
دیکھیے ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, اب یہ موضوع چھیڑ ہی گیا تو آج تھوڑا سا اشارتاً ذکر تو اس میں تھا بھی, لیکن یہ اچھا سوال ہے کیونکہ ہم تطہیر چاہتے ہیں نا, ہم پیور ہونا چاہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہیں نا. تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا بات کہ یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں نا, ان کے سٹیپس ہوتے ہیں. جب آپ کو اللہ سے محبت ہوتی ہے نا تو اللہ کی بات سے بھی محبت ہوگی, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہوگا نا تو آپ کی پسند ناپسند بھی اچھی لگے گی. آپ میں سے کس کس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت محسوس ہوتی ہے؟ ہینڈ ریز کریں, میں تو اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کر دوں گی. میں نے تو جنت میں ان سے ضرور ملنا ہے اللہ تعالیٰ سے, ہم نے لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں جنت میں بھی ان سے ملتے وقت پردہ کرنا پڑے گا, حالانکہ جنت میں پردہ نہیں ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ مجھے جنت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل دکھایا گیا, تو میں اس کی طرف بڑھنے لگا لیکن مجھے وہاں پیچھے کوئی عورت محسوس ہوئی. तो मैं उमर की गैरत को सोचकर उधर नहीं गया, पलट के आ गया। हजरत उमर ने ये पर्दा बार बार अल्लाह से मांगा तो कुरान में नाजिल हुआ। आज उमर के मांगे हुए पर्दों को हमने तार तार कर दिया। तो जिन शख्सियात से मोहब्बत होती है ना, उनकी पसंद नापसंद भी, उसका भी ख्याल रखना होता है। अल्लाह से तौफीक मांगे, बाहर वालों को फतवे ना दें, अपने दिल से तकवा लें कि अल्लाह मुझे ऐसा तकवा दे कि मैं अपने आप को वैसा बना लूँ कि कल जब तू मुझे देखे तो तुझे मुझ पर प्यार आ जाए। ठीक है
भाई, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे के बताए थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता अगर इख्तियार करना है, पर्दे के अगर नकाब की बात कर रहे हैं, तो फिर उनकी बीवियों को देखो कि वो किस तरह से लिबास पहनती थी।
बिल्कुल, बहुत सही बात है। कल या परसों के एक दर्स में मैंने कल ही कहा था कि इमेजिन तो कीजिए कि बीबी फातिमा आज के दौर में हो, खदीजा हो, आसिया हो, जो भी थी, वो किस हाल होली में यहाँ फिरेंगी, इमेजिन तो कीजिए। नबी सल्लम हो आज के दौर में, उमर फारूक हो, उस्मान गनी हो, आप क्या सोचते हैं उनका क्या गेटअप होगा? बस ये जवाब है। ठीक है, तो जैसे जिनसे मोहब्बत होती है, इंशाल्लाह हमें उन जैसा बनने में कोई मान होता। हम कहते हैं बड़ी मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत है, लेकिन हम उन जैसे काम ना करें। मैंने देखा छोटी बच्चियाँ अपनी टीचर से बहुत मुतासिर होती हैं। एक बच्ची को मैंने देखा तो वो निकाब से खेल रही है, भाई इसको क्या हुआ, कहती कहती निकाब है, क्यों, उसकी टीचर करती है, तो टीचर उनके लिए रोल मॉडल होते हैं। हाँ ये लग पता है, बड़े होते हैं तो टीचर्स हमारे लिए रोल मॉडल कोई नहीं रहते, फिर हम कहते हैं वो हमारी मर्जी से बन जाए। जैसा आप इर्द गिर्द का माहौल रखेंगे, आपके बच्चे उसको आइडियलाइज करेंगे। एक बच्ची किसी मुस्लिम कंट्रीज, यानी ये जो UAE के कंट्रीज ना, कतर, कतर में वो रहती हैं उनकी माँ, और वो वहीं अपनी बच्ची को, तो वो बच्ची हमारे पास पिछले साल UK आई ना अपनी नानी के पास मिलने के लिए। तो वो बच्ची जब रात को हम तरावी के लिए जा रहे थे तो गाड़ी में बैठी, तो मुझे नहीं अंदाज़ा हुआ कि आगे कोई बैठा हुआ है, तो वो जो मेरी हमारी स्टूडेंट थी उनकी वो नवासी थी, तो कहे साजा आपने उसको देखा, बच्ची का नाम लेकर, मैं कहा किधर है वो, कहती आगे बैठी। अब मैंने जब गौर किया ना, तो वो बेबी सीट में दो ढाई साल की थी, फुल काला निकाब पहन के बैठी हुई। भाई क्या हुआ, जिद कर रही थी कि कहती घर से निकलती नहीं है जब तक कहती मुझे भी ये पहनाओ। फिर वो बच्ची के साथ मैंने भी साथ नमाज पढ़ी, इतनी खूबसूरत बेबी है, उसकी तस्वीरें भी मेरे पास इधर, आप देखें तो दिल खुश होता है उसको देखकर। अब ये मैं नहीं कह रही कि ज्यादती है, या आपके देखिए तो उसको किसी ने नहीं कहा, लेकिन वो क्या करती है जब नानी को निकलते देखती है माँ को, तो जिद करती है मुझे भी पहनाओ। वो बच्ची मेरे साथ खड़ी हुई, बिलीव मी हम औरतों में थे, मैंने भी जाके निकाब उठा दिया जैसे हम उठा देते हैं ऊपर, उसने भी उठा दिया, पूरी नमाज वो ऐसे पोटली की पोटली बनी हुई है और उसमें फिर जब हम बाहर आ रहे वापस, तो कहती है मेरा ऊपर से नीचे करो। अभी उसका दिल है, हम नहीं फतवा दे रहे कि 2-2.5-3 साल की उम्र में अपनी काब करें, लेकिन बच्चों को वो माहौल दिखाएं तो बच्चे खुद ही अपना लेते हैं। ठीक है, एक छोटी सी बात कर दूं, किसी को बुरा तो नहीं लगे। देखिए जब अल्लाह ने आपको घर से बाहर निकलकर हिजाब निकाब इसकी बातें दी है ना, तो फिर घर के अंदर आपका वो रुबू नहीं होना चाहिए। बस जब हम दीन के नाम पर इस तरह भी लोगों को ऑफेंड, बस जब हम दीन के नाम पर इस तरह ऑफेंड कर देते हैं कि मिसाल है कि आप बाहर निकाब हिजाब अबाय में ना, तो आप घर के अंदर भी वही सारा नहीं रखते हैं। अब क्या है जी, बाहर नहीं बदल जा बजाय इसके कि बाहर जाकर पहना हो अपने और घर आके उतारे, एक डिफरेंस फील होगा ना। फिर जो लोग, अब मिसाल है अब हम सब इस वक्त औरतें हैं, अगर मैं आते ही इसी निकाब में जो मैं पहन के बाहर से आई अबाय में इधर आके बैठती, आप में से हर आने वाले एकदम मुझे देख के ज़रूर कांपता, हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी। क्यों, अल्लाह ने मौका दिया मुझे। अब मैं गर्मी में अपने आप को लपेट कर उलझन में अननेचुरल माहौल में इधर बैठी रहूं और उसी में उठ के बाहर चली जाऊं, जो अबाया मैं सारा दिन पहनूंगी, स्मेल आएगी कि नहीं। और मेरे अगर अल्लाह ने मुझे पहनने ओढ़ने का, मुझे अच्छे कपड़े पहनने का मना नहीं किया, तो मैंने अगर वो छोड़कर सिर्फ आपको 24 घंटे अबाया में देखना है, तो वो जो बेचारे अभी दुपट्टा भी नहीं लेते, वो तो कहेंगे हम इस दिन में नहीं आ सकते। तो दीन की तबलीग करते हुए तो ख़ास तौर पर इन चीज़ों को रखें, बाहर क्या है अंदर क्या है। अच्छा दूसरा फिर इसका एक नुकसान क्या होता है कि जब लोग बाहर और घर में एक ही है ना, तो फिर अबाय खूबसूरत कर लेते हैं, चमकते हुए दमकते हुए मोती लगा रोला है, क्योंकि पार्टी में भी तो यही पहनना है ना, शादी में तो पहनना है, तो वो एक ड्रेस का कॉन्सेप्ट ख़राब हो गया। अबाया स्काफ क्या है कि बिल्कुल ऐसे लगे कि आप एक घर की सीधी सादी औरत है, आप एयरपोर्ट में चले जाएं, आप जहाँ मर्जी चले जाएं, डॉक्टर पे जाएं, किसी को क्या लगे, लेकिन जब आप निकाब उतारें आप एक उनको एक डिसेंट एक महजब औरत दिखें। तो बैलेंस रखिए। अब घर में मियाँ साहब के सामने आप सारा दिन अबाय में फिर रही हैं, नकाब लपेटा हुआ है और घाब रही हैं और अदरक और लहसुन की मिर्चें, वो खुद ही अबाय के खिलाफ हो जाएंगे। ठीक है, तो दीन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, इस्लाम को खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी इस्लाह कर दे। काफ़ी है मेरा ख्याल है, क्योंकि शाम को भी बोलना है। आप लोगों ने तो पता नहीं सुनना है कि नहीं, लेकिन आ जाइए डिवॉन में। कल का दर्श चूंकि बहुत दूर है तो मुझे लगता है कि आप में से कम लोग आएंगे, लेकिन आज शाम का फिर एक आखिरी दर्श सोच के आ जाइए अगर आपके लिए आना आसान होगा। ठीक है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तूब अलैना इन्नका अंत तवाब रहीम। व सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़िही व असहाबिही अजमईन बि रहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्ब हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना हबलना मिन अज़्वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुनिन व जअलना लिलमुत्तकीना इमामा। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन ग़लबति अद्दैन व ग़लबति अल-अदू व शमातति अल-अअदा। अल्लाहुम्मा इक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। या अल्लाह या रहमान, जो हमने पढ़ा सुना उसमें ठीक बात को कबूल फरमा और गलतियों की इसलाह फरमा दे। या अल्लाह इन सब साथियों की जायज़ ख्वाहिशात अपनी रहमत से पूरी फरमा। या अल्लाह हम सब को तेरी ज़ात पर और तेरे नबी पर ईमान में पुख्ता कर दे। या अल्लाह हमारा कलमा पक्का कर दे। या अल्लाह हमें तेरे बाद और तेरे नबी के बाद किसी और की ज़रूरत ही ना रहे। या अल्लाह हमें वैसा बना के जिस तरह तू देखना चाहता है, और कल हम तेरे पास आएँ तो तू हमसे राज़ी हो। या अल्लाह इस घर पे अपनी रहमत फरमा, हमारी इस बहन की इस कोशिश को कबूल फरमा, और या अल्लाह इनके बच्चों को, इनके घर वालों को, जो भी इनके ख़ानदान के, इनको इनकी आंखों की ठंडक बना। या अल्लाह हम सब की औलादों को आंखों की ठंडक बना। और या अल्लाह जो भाई बहनों बहन है जिनके, जो भी उनको अपनी रहमत में रख, उनकी तकलीफ़ें बीमारियाँ दुख परेशानियाँ दूर फरमा, आसान ज़िंदगियाँ ता फरमा। या अल्लाह हमें हयातन तजीबा सिखा। या अल्लाह हम अपनी इस दुनिया को इंजॉय करें। या अल्लाह हम क्यों दुखी दुखी लगते हैं, हम क्यों परेशान दिखते हैं? या अल्लाह इसलिए कि हमने तेरे और तेरे नबी के बताए हुए तरीक़ों को छोड़ दिया। या अल्लाह हमें कदम कदम पीछे मुड़ने वाला बना दे। और या अल्लाह हमारे उस्तादों पर भी अपनी रहमत फरमा, जो ज़िंदा उनको सेहत आफ़ियत दे और हमें उनकी दुआएँ लें, हम उनकी दुआएँ लें। और या अल्लाह जो दुनिया से चले गए उनकी बख्शिश फरमा। या अल्लाह हमारे माँ बाप पे भी अपना रहम फरमा, और जो दुनिया में है उनको सेहत आफ़ियत तंदरुस्ती और सुकून वाली ज़िंदगी दे। और जो दुनिया से चले गए उनकी बख्शिश फरमा। जिसने जहाँ कभी दुआओं के लिए कहा उनकी दुआएँ कबूल फरमा। जो बीमार है उनको सेहत आफ़ियत दे। और या अल्लाह जो साथी दीन के रास्ते में मददगार हैं तो बेहतरीन तरीके से उनकी मदद फरमा, और उनके रास्ते की मुश्किलात को, आजमाइशों को, परेशानियों को या अल्लाह अपनी रहमत से खैर और आफ़ियत में बदल दे। कमी बेशी से दरगुजर फरमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हौज़े कौसर का पानी पिलाना, आपकी शिफात अता फरमाना, और क़यामत के दिन अपने चेहरे का दीदार करवाना। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूब इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तूब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला खैरी खल्क़िही व असहाबिही अजमईन बि रहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। जज़ाकअल्लाह खैर। एक दो छोटी सी बस चीज़ें रह गई आपके लिए। यहाँ एक छोटा सा स्टॉल लगाया गया है, या लगाया नहीं है तो लगा लेंगे अभी। एक तो ये कार्ड्स है, और इसका हदिया अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं अपनी दोस्तों के लिए, तो अगर आप ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते तो इंशाल्लाह ये कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं आपको। यदि ये सिर्फ एक सदका जारिया होता है, इसी की मनी इसी में जाती है। इसमें एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ आपके लिए आज जो है वो USB ड्राइव है। थोड़ी सी मुझे आपकी अनडिवाइडेड तवज्जो चाहिए, दो तीन मिनट सिर्फ। ठीक है। देखिए, इस ये USB ड्राइव है, 8 GB की है, जिसमें आप सोच सकते हैं कई 100 घंटे होंगे। आप इस पूरे डाटा को अपने कंप्यूटर के ज़रिए, iPad, iPod, इवन अब नई गाड़ियों के अंदर आप USB ड्राइव में इसको लगाते हैं तो आपके MP3 प्लेयर्स पे ये चलते हैं। ये पूरे कुरान का तर्जुमा और तफसीर है, जिसके अंदर आप अगर सूरह फातिहा से शुरू करते हैं तो मेरा ख्याल है कि आने वाले रमज़ान तक आप दौरे कुरान पूरा कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर 30th पारे की वर्ड टू वर्ड तफसीर, तर्जमा और डिटेल तफसीर है। फिर इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ है, एक ख़ज़ाना है इसके अंदर। और ये एक ऐसी चीज़ है, अगर आप सिर्फ एक भी लेते हैं तो आप अपनी 100 लोगों के साथ शेयर करें, फिर भी ये आपके पास है। इसका तरीका यही होता है, जिसके भी लैपटॉप में लगाएंगे उसके पास इसको कॉपी करके, इसकी 1000 कॉपी बना के आप बांटें, फ्री बांटें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। ये दावा पर्पज़ है। इसकी जो भी कॉस्ट है ये सारी के सारी दोबारा इन्हीं को रिप्रोड्यूस करने में जाती है। फिर उसके बाद 2-3 टॉपिक नए अच्छे CDs के आए हैं, वहाँ की दुआ, जन्नत की हवा, किसी भी रक्षे के पीछे लिखा होगा, देखा होगा आपने। ये एक लेक्चर है, टीनेजर बच्चों के साथ कैसे डील करें। ये बहुत लाइट सा लेक्चर है, जिसमें हुक्म नहीं है बल्कि इमोशनली माँ बाप और बच्चों के ताल्लुकात को किया गया हाईलाइटेड। कुरान मेरे दिल की बहार, نام سے ہی پتہ چل رہا ہے اس میں کیا ہوگا. اور محسن کون؟ سورہ لقمان کی آیتوں کی تفسیر ہے. اور بھی ٹاپک ہیں کچھ مجھے لگتا ہے. ان سی ڈیز کا بھی آپ زیادہ سے زیادہ لے کر اس کا صدقہ جاریہ بڑھائیں تاکہ آپ کی طرف سے دوسروں کو بھی جائیں. کوئی ابھی پیسے نہیں ہیں, بعد میں بھی ان کو دے سکتے ہیں کیونکہ یہ آن گوئنگ پروجیکٹ میں جاتا ہے. ایک یہ چیز جو بالکل اپ ٹو ڈیٹ ہے اس وقت, وہ کیا ہے کہ رمضان کے یہ کیلنڈر ہے. کیلنڈر عام طور پہ تو دیکھیے نا کہ جنوری سے دسمبر تک ہوتا ہے جس میں آپ لوگ ڈیٹس دیکھ لیتے ہیں یا کچھ اور, لیکن یہ ایک ہیبٹ کیلنڈر ہے جس میں آپ اپنے بچوں کو اور خود کو کچھ اچھی عادات کا پابند بناتے ہیں. بس اس میں آپ دیکھیے کہ ہر مہینے کے ساتھ ایک چیک لسٹ ہے. اگر ہم آج سے دیکھ لیں, آج کیا ڈیٹ کے 22 فیبرری ہے نا, تو یہ دیکھیے یہ فیبرری کا پورا منتھ ہے. 22 کیا ہے آج, ادھر ہم دیکھ لیتے ہیں, منڈے ہے. یہ دیکھیے کہ سننا منڈے اور تھرسڈے کا جو روزہ ہوتا ہے اس کا چیک مارک ہے. اگر آپ رکھتے ہیں تو چیک مارک کر لیجئے. پھر اسی طرح اس میں آپ کو اسلامی ڈیٹس بھی ہیں اور دوسری بھی, اور ہر دن کی کوئی ایکٹیویٹی ہے. جیسے یسماء الحسنیٰ لکھے میں نا, تو اللہ تعالیٰ کے ان دو ناموں پہ غور ہے. اور اس کا لنک ساتھ ویب سائٹ پہ بھی ہے کہ یعنی ان کی مختصر سی یسماء الحسنیٰ کی وضاحت آپ وہاں سے سن سکتے ہیں. پھر ہر مہینے کی ایک دعا ہے, جیسے اس مہینے کی دعا ہے آپ پڑھیے گا, اللہم فقہنا فی الدین, کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے, انڈرسٹینڈنگ آف دے ریلیجن دے. اب پورا مہینہ آپ اس کو دیکھتے ہیں, مل کے پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ یاد ہوتی ہے. ہر مہینے ایک ہی چیز ہے. پھر اسی طرح یہ دیکھیے اس مہینے کا تھیم, ولقد یسرنا القرآن للذکری, کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. ہر مہینے ڈفرینٹ تھنگز ہے, تو یہ آپ اپنے بچوں کو یوز ٹو کرنے کے لیے کر سکتے ہیں, خود کو بھی فائدہ ہوتا ہے. پچھلے سال کے کیلنڈر فوراً بن کے ختم ہو گئے, یہ اس سال کا بھی نیا آیا ہے, تو آپ اس کو ایز اے گفٹ لے سکتے ہیں. اس کی ساری منی جو ہے یہ ہمارے قرۃ العین پروجیکٹ پہ جا رہی ہے. ناروے میں ایک بچوں کے اسکول کی بلڈنگ لے لی گئی ہے, اب اس وقت ہم اس کو پے آف کرنے کے اسٹیپس میں ہیں, انشاءاللہ اللہ کروا دے گا. تو یہ کیلنڈرز کی جتنی بھی منی یا ایون دعویٰ پروجیکٹ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ انہی پروجیکٹس میں جاتی ہیں. تو آپ لوگ اس کو اس سوچ کے ساتھ لے سکتے ہیں کہ ایک تو آپ کے ہاتھ میں چیز آ رہی ہے, دوسرا یہ کہ ایک نیکی کے کامن میں تعاون ہے آپ کا. اور جزاک اللہ خیر, کوئی بات میں رہ گئی تو مجھے بتا دیجیے. جی بھائی خدنا, شام کا اگر درس آپ نے دیکھنا ہو کہ کس جگہ ہے تو آپ دیکھیے کہ ویب سائٹ کے اوپر ہمارے لنک ڈلا ہوا ہے. اگر آپ noorulquran.com پہ جائیں گے تو وہاں, ویسے اس میں تو شکاگو کا نام نہیں ہے لیکن فلائر بہرحال موجود ہے. تو جزاک اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آن لائن پہ بھی اب اجازت ہے, انشاءاللہ شام 6 کا انہوں نے ٹائم دیا ہے. کوئی مجھے بتا سکتے کہ مغرب کتنے بجے ادھر؟ ٹھیک ہے, تو بس اگر تھوڑا بہت 19:20 اوپر نیچے ہوا نماز کی وجہ سے, لیکن 6 بجے آپ لوگ روم اگر کوئی ایڈمن کھول دیں تو مجھے لگتا ہے کہ پھر لوگوں کو پہلے سے پتہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. ابھی میں کلوز کرتی ہوں, آپ میں سے جو بھی ایڈمن ہیں روم بند کرنا چاہیں تو کر دیجیے, کنٹینیو کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آج کے دن میں کوئی اور روم نہیں ہوتا. جزاک اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کسی کی مزاح ہو سکتا ہے کہ جی انبیاء ہے لائک ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بھی خواب میں آئے؟
کوئی بھی آ سکتا ہے, اللہ تعالیٰ جی بالکل آ سکتا ہے.
میں نے دیکھا تھا تو اسی لیے ایسا, بعد میں مجھے ہوش ایسے جب آیا تو ایسا لگا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام تھے. تو وہ پاسبل ہے,
سب پاسبل, ایوری تھنگ.
مطلب ہمیں تو پکچر عیسیٰ علیہ السلام کا ان لوگوں نے بنا کے بتایا ہے, مگر ایسا نہیں تھا, کچھ اور تھا. اور میں نے مطلب